से अगला सबक शुरू करेंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 60 से 61 है, आयत नंबर 60-61, और हमारे पूरे कोर्स में से सबसे छोटा लेसन है आयतों के एतबार से। यानी सिर्फ दो आयतें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन दो आयतों के अंदर भी क्या दुनिया छुपी हुई है, और अल्लाह ताला हमें इसमें इतना कुछ गौर व फिक्र का देते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है। चंद बातें सबक से पहले, सबक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आज के जो पारे का जो मेन थीम है, जिसको आप कह सकते हैं कि आज के पूरे सबक का मरकजी नुक्ता क्या है, कि आजाद कौमें गुलाम क्यों बनती हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाकर हम सबको इसमें बहुत कुछ सोचने को दिया कि हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें। पूरे सबक में जो हमें मरकजी नुक्ते मिलेंगे वो क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को एक बड़े मकसद के लिए चुने और उनको वो सारी खूबियां भी दे जो उस मकसद को पाने के लिए जरूरी होती हैं, फिर क्या वजह है कि वो कौमें एक वक्त में अल्लाह की नाफरमान हो जाती हैं और उनको दुनिया के पिसे हुए लोगों के हाथों गुलाम बना दिया जाता है। आप आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी मजीद, कि किस तरह बनी इसराइल जो अपने वक्त का एक बड़ा खूबसूरत गिरोह था, लेकिन उस दौर के बिल्कुल कमजोर लोगों के हाथों पिसने लगे। और इस सबक में आज हम ये भी देखेंगे कि आला के बदले अदना को मांगने का नुकसान क्या होता है। अल्लाह ताला एक आला मकसद के लिए जीने का सबक देते हैं, लोग उसकी जगह छोटी छोटी चीजों पर चल जाते हैं। आयत नंबर 60 को देखेंगे तो इसमें हमें मेन थीम मिलेगा कि अल्लाह की बांट अदल वाली है, जुल्म वाली नहीं। और आयत 61 के अंदर से जो बुनियादी नुक्ता हमें दिखेगा वो है जायकों के हरीस, जायकों को पाने वाले। हम इस पूरे सबक में देखेंगे कि अल्लाह ताला अपने वक्त में लोगों को कितने मौके देता है। बनी इसराइल को भी दिया, लेकिन उन्होंने इसको पीछे डाल दिया। और आज के सबक से हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा जो हमारे बच्चे भी अक्सर पूछते हैं कि अगर हम उम्मते मोहम्मदिया हैं तो आज हम पिसे हुए क्यों हैं, आज हम गुलाम क्यों हैं, और इसके अंदर आज हमारी दुनिया में इज्जत क्यों नहीं है। हकीकत यह है कि जब जिंदगी का किसी भी चीज का इंसान को मकसद भूल जाता है ना, तो फिर उसके साथ इसी किस्म के हालात होते हैं। आइए आयतों को शुरू करके साथ साथ रहेंगे और मुहासबा अपना। सबक बहुत क्रिटिकल है और ऐसे सबक सुनते वक्त हमेशा हमारे जहनों में हमारे खानदान आ जाते हैं, हमारी फैमिली आ जाती है। हम सोचते हैं अच्छा इनको पूछो, इनको देखो, लेकिन हमने और आपने मकसद पे नजर रखनी है और मैंने खुद को देखना है। हर एक हम एक खास हिसाब से चंद आयतें, चंद एक आयत का हिस्सा जहां तक के हमारा मौजू एक होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको साथ लें ताकि आपका जहन भी साथ साथ चले। शुरू करते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 60। पहले हम इसका हल्का सा तर्जमा देखेंगे वजाहत के साथ। व इजिस तस्का, और जब मांगा मूसा ने, व इजिस तस्का मूसा अली कौमी ही, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। कब मांगा था? सहरा में। कौन से सहरा में? तीह, पीछे बात हो चुकी, वादी है तीह के अंदर। क्या हुआ? फकुलना, फिर हमने कहा। कैसे कहा? वही के जरिए कहा, इद रिब, मारो, टकराओ। किसको? दी असा का, अपने असा को। कहाँ लगाओ या कहाँ मारो? अल हजर, पत्थर पर। यानी मूसा ने पानी मांगा, लकोदक सहरा में खड़े थे, पानी की दरख्वास्त की, तो हमने मूसा से कहा कि फुलां चट्टान पर अपना असा मारो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया। हुआ क्या? फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। 12 चश्मे क्यों फूटे, इस पे बाद में बात करते हैं। बस यहां देखिए कि मूसा ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्यों मारूं, क्या होगा, नतीजा क्या है, पत्थर पे ऐसा मारूं, ये क्या है, चूं चरा नहीं, बल्कि ये भी नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा ने मार दिया, खुद ही कह दिया, हमने कहा कर दो, रिजल्ट बता दिया। यहां से पहली बात तो अमल की यही लिख ले कि अल्लाह के हुक्मों को सुनकर चूचरा नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह की बात बताने वालों की बात सुन को भी इंसान के अंदर समेना वाताना का जज्बा जब रहता है तो अल्लाह की तरफ से वही बरकतें आती हैं जो कि यहां हम देख रहे हैं कि पत्थरों में से पानी निकल आता है। انتہائی سبمیشن کی بات اس میں ہمیں دیکھتی ہے. ہر چشمے نکلے قد علیم کل اناسن, بے شک جان لیا ہر گروہ نے. یہ جو لفظ اناس ہے نا, یہ انس کی جمع ہے. انسان کا لفظ جن و انس ہم بولتے ہیں, اناس اسی سے جمع کا لفظ آتا ہے. اور اساکا کا لفظ جو ہے یہ لاٹھی کے معنوں میں, حجر ویسے تو پتھر کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد ایک خاص پتھر تھا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر کیا, اور یہ بھی ایک معجزہ تھا اس دور کا. قد علیم کل اناس مشربہم, ہر گروہ نے اپنا مشرب ڈھونڈ لیا. یہ جو لفظ ہے نا مشربہم, اس کو آپ الگ کریں گے نا تو مشرب اور ہم دو لفظ ہیں. مشرب مفعل کا وزن ہے, مراد کیا ہے پانی پینے کی جگہ. اردو میں اس کو گھاٹ کہہ دیتے ہیں نا, گھاٹ پانی پینے کی جگہ کو پا لیا, یعنی جہاں پہ جا کے پانی پینا ہوتا ہے. جب نکل آیا پانی تو اللہ تعالیٰ نے اب پوری قوم کو کیا کہا. اگر آپ تھوڑے کے ساتھ کھیلنا سیکھیں نا, تو شروع میں جو باتیں چل رہی نا یہ واحد کے سیگے کی ہیں, سنگولر ہے, کیونکہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا, مارو ادرب, واحد ہے, اونلی ون, یو ول ڈو دس. لیکن اب ساتھ ہی سیگے بدل گئے, کلو و شربو, تم سب کھاؤ اور تم سب پیو. یہاں پوری بنی اسرائیل مراد ہے اور جو بھی اس دور کے لوگ تھے, کھاؤ اور پیو. یہ غور و فکر قرآن میں کریں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی کے غموں کا غور و فکر بھول جائے گا, وقت ہی نہیں ملے گا. غور کیا کرے, اچھا ادرب آیا ہے. اردو ترجمے پہ چلیں ابھی تو غور کر لیں, یہ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے, اردو میں ہی دیکھیے کہ شروع میں کہا کہ موسیٰ تم اس کو مارو, پھر کہا سب کھاؤ, تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لیڈر کے ذریعے جو کام ہو جاتا ہے نا تو اس کا فائدہ پوری امت کو ملتا ہے, یہ مطلب ہے. کلو وشربو میں سب شامل ہیں لیکن ادرب میں صرف لیڈر شامل ہے. اس نقطے کو آج سمجھ کے جائیے گا. آج امت مسلمہ اگر اس نقطے پہ غور و فکر کر لے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اس کے اوپر. چند لوگ کام کریں گے تو اس کا پھل اور اس کا فیض پوری امت کھائے گی. اگر آپ کا نام اس ان لوگوں میں شامل ہو جائے نا تو آپ کے لیے زندگی کی اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے. زندگی جو گزر گئی ہے نا اس کو پیچھے ڈالیں, ڈونٹ وری, جو ہونا تھا ہو گیا. آج سے ٹوڈے, ناؤ, رائٹ ناؤ, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, گھڑی کا وقت دیکھ لے, دن لکھ لے, ڈیٹ آج کی لکھ لے, آج سے یہ دعا کرنی شروع کر دیں کہ اللہ مجھے ادرب والوں میں شامل کر, میں کام کرنے والوں میں بن جاؤں, میں پتھروں میں چٹانے تراش کے پتھروں کے اندر سوراخ کرا کے پانی نکلنے والوں کے پانی نکلنے کا ذریعہ بن جاؤں, بعد میں لوگ اس پانی سے خیر لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس پتھر پہ ڈالا گیا, آج ہمارے عصا لوگوں کے دلوں پہ ڈلنے والے ہیں, اور آج کا عصا قلم ہے. آج کی امت جو مسلمان کہلاتی ہے, ان کا پرابلم کیا ہے کہ آج ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار نہیں ہے جو لوگوں کے سخت دلوں کو توڑ دیں. اگلے دو رکوع کے بعد آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, تو وہاں بھی یہ جملہ آئے گا جو بار بار آپ کو یاد کروا دوں گی کہ قرآن کیا ہے. قرآن بریکس دا ہارڈ ہارٹس, قرآن سخت دلوں کو توڑتا ہے, اینڈ ہیلز دا بروکن ہارٹس. ٹوٹے ہوئے دل والا بندہ جب قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے نا, کوئی چوٹ کھایا ہوا, کوئی حادثہ اس کی زندگی میں ہو گیا, کوئی موت ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, کچھ بھی ہوا, تو قرآن اس کا دل سیتا ہے. ڈونٹ وری, ابھی آگے دیکھو, ابھی زندگی بہت ہے, بڑی خیر ہے آگے. پھر کیا ہوا اگر تمہیں لوگوں نے ٹھکرا دیا, لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے, اللہ جو ہے تمہاری قدر کرنے والا, تو میری طرف آ کے دیکھو, میں تمہاری بات کرتا ہوں. اس طرح جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں نا, جو دور دور رہتے ہیں, جن کو دنیا میں ہر چیز پہ وقت, ایفرٹ اور مال لگانا آسان لگتا ہے سوائے دین کے, ان کو اگر اللہ کبھی پھر قرآن میں لے آئے تو پھر ان کے دل ٹوٹتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب چیز بہت بگڑ جاتی ہے نا تو ٹوٹنی ضروری ہوتی ہے. گھر کی رینوویشن کو ذہن میں رکھ لے, ہلکی پھلکی ٹچنگ کو آپ کہتے ہیں سیٹل ہو جائے گا, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں دیوار نکالنی ہے, یہ کرنا ہے, اتنی چینجز, تو پھر انجینئر آ کے کیا کہتے ہیں کہ نہیں, میرا مشورہ یہ کہ آپ اس کو رینوویٹ کرنے کی بجائے ڈیمالش کریں, پورے گھر کو نئے سرے سے اپنی مرضی کا بنائیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ انسانوں کی شخصیات دو قسم کی ہوتی ہے. میں اور آپ زندگی کے ایک بالکل دوسرے کنارے سے نکل کے آنے والے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بگڑے ہوتے ہیں, माहौल का असर थोड़ा सा होता है, खराबियां चलती हैं कुछ ना कुछ, कुरान उनको बस रेनोवेट करता है, वो चमक जाते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल आप मिसाल ले ले अबू बकर सिद्दीक की, मिसाल ले ले हजरत जैद की, मिसाल ले ले हजरत अली की, खतीजा की ले ले, हल्की सी टचिंग की उनकी शख्सियत निखर के सामने आ गई, बात वाजे हो गई। लेकिन कुछ लोग बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं, सख्त दिल कठोर, उनको कुरान तोड़ता है, उसमें वक्त लगता है। इसमें मिसाल हजरत उमर की ले ले, उनका दिल वाकई टूटा था तो फिर आए अबू बकर, उमर ने अबू बकर और बाकी साथियों ने अल्लाह के नबी से इतनी आयतें कोई नहीं थी सुनी हुई कि जिसके बाद दिल में सुराख हो, लेकिन उमर ने सुनी, कहीं सूरत मारे सुने तो दिल में असर हुआ, कहीं सूरत तोहा सुनी फिर असर हुआ, फिर टूटा दिल तो असर हुआ। तो हम सब अपने ऊपर भी नजर रखें और अपने साथियों पे, किसका दिल कैसा है। अगर कोई सख्त दिल है, हार्ड हार्टेड है, तो फिर तो तोड़ना पड़ेगा, फिर डिमोलिश करें, फिर उन शख्सियात को नए सिरे से कुरान का पानी दें, फिर उसको सजाएं। हाँ, जब वो बनेंगे तो ये तो आप सबको पता है कि रेनोवेटेड ही होता है, और जो डिमोलिश होकर ब्रांड न्यू बनता है उसमें वक्त मेहनत दरकार है, सब्र दरकार है, लेकिन बिल्कुल एक नई शख्सियत बनती है। ये बातें करेंगे आगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इशारा मकसूद था कि एदरिब एक बंदे का काम है, बड़े काम थोड़े लोग करते हैं। लीडरशिप के दर्जे पे जो लोग पहुंचते हैं बाद में, वो मुखालिफ माहौल से लड़ते हैं। मूसा का ये अमल के पत्थर पे चटा पत्थर पे ऐसा मारना, ये एक इस्तियारा भी है, सिंबॉलिक है कि देखो तुम्हें भी अपने इर्द गिर्द ऐसे ही पत्थर दिल लोग दिखेंगे, एमलेस लाइफ गुजारने वाली सोसाइटीज दिखेंगी, ई ड्रिंक बी मैरी, जी और जीने दो, लेट एंड लेट टू लिव, लेकिन तुमने इन सख्त दिलों इनको गुदाना है, दिल गुदास बातें करो, आंसुओं से दिल नरम किसी का होता है घर वालों का तो आंसू बहाओ, हाथ पकड़ के, हाथ के लम्स से अगर जज्बात सिखा सकते हो तो हाथ के लम्स से, गले लग के रोना पड़े फूट के तो रो लो ताकि उनका दिल नरम हो। याद रखिए, हर जगह दलाइल के आसार नहीं चलते, जुबान चलाएंगे तो दिल सख्त दिल वाला आपको और बुरा कहेगा। बस जब हम दलाइल देते हैं, हक मांगते हैं जबरदस्ती, जब आपके इर्द गिर्द वालों के दिल सख्त दिखे ना आपको, तो वहां आप दूसरे तरीके इख्तियार करें। वो कहते हैं ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, लेकिन मर्द नादा पे कलाम में दिल फरे बिल असर। आप 100 हदीसें यहां से सीख के जाएं और घर वालों को सुनाएं, अगर सख्त दिल है वो आपको कहेगा हदीस को तो हम मानते ही नहीं, तुम्हें क्या पता ये बात की लिखी बातें ठीक है कि नहीं, सब खत्म। आप कहते हैं देखो इतनी आयतें पढ़ ली, इतना लफ्जी तर्जमा पढ़ लो, कहेंगे बैठो आराम से रोटी पकाओ। ये बात दिल सख्त है कब नरम होंगे, जब आप अपने जज्बात की चाशनी देंगे। मैं नहीं मानती कि इंसान इंसान हो और फिर आपके आंसुओं से पिघले ना, आपकी बेबसी, आपका सिसक ना, आपका बिल बलाना ना दिखे। तो लोगों को पहचानिए, आप साइकोलॉजी पढ़े, कुरान जितनी खूबसूरत साइकोलॉजी आपको सिखाएगा दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता। बड़े से बड़े साइकट्रिस्ट इस पे हैरान होते हैं। आप ही लोगों में से एक साथी आज नहीं है, मुझे चंद दिन पहले फीडबैक दे रही थी और उनकी आवाज़ से उनकी खुशी दिख रही थी कि आपको क्या पता मुझे कुरान ने क्या दिया, कि मेरी तो डॉक्टर हैरान हो गई है कि आपको क्या मिल गया। सिर्फ दौरे कुरान का असर है कि आपका तो वो जो दिमागी प्रॉब्लम्स थे उसमें से मुझे अब कुछ दिख ही नहीं रहे। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी चीज है, पत्थर के ऊपर पानी, पत्थर के अंदर से पानी निकलना, लोग कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, मूसा ने मारा हो गया। तो आप सोचिए कि जब एक सख्त दिल इंसान की आंख मौजूद है, ये आपकी और मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ये भी एक मौजूद है। एक टीचर था तो उसने अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछा कि ये बताओ कि व्हाट आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने भी सुना होगा 7 अजीब चीजें। वो स्टूडेंट्स ने गिनवानी शुरू कर दी, एक ने कहा कि ताजमहल है आगरा का, दूसरे ने कुछ जो भी आपको सबने आपने सुने है, चाइना की वॉल है, जो बड़े बड़े दुनिया में है ऐसे अजूबे। वो तो एक स्टूडेंट खामोश बैठी थी, उन्होंने कहा नो मैं इनको नहीं कहती। तो टीचर ने कहा फिर तुम बता दो तुम्हें क्या पता है। तो उसने कहा कि फर्स्ट वॉन्डर, यानी फर्स्ट वंडर जो दुनिया का वो क्या है, आंसू कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं। फिर दूसरा वंडर है टू स्मेल, महसूस करना, देखना, सुनना, बोलना, ये वंडर्स हैं, लेकिन हम गौर ही नहीं करते। सुबह शाम इन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा इस पे कोई गौर व फिक्र नहीं होता, तदब्बुर की आदत बहुत कम है हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने इस जरिए से मूसा अलैहि सलाम से ये जो काम करवाया ये क्यों कराया। पहली बात तो नोट कर लें कि ये वादी तीह का, वही 40 साल जो इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड के चल रहे हैं उसी को जेहन में ले आइए। अब सारे कौम थी, इसको अब कुछ चाहिए था ना, वॉन्डर ब्लाइंडली वाली इनकी कैफियत थी, चलते फिरते थे सारा दिन, इधर से उधर भागते रहते थे, कुछ भी नहीं होता था, शाम होती। अब इनको पानी भी चाहिए था, खाना भी चाहिए था, हर इंसान है खाना तो मांगेगा। अब मूसा अलैहि सलाम एक लीडर थे, गो के कौम नाफरमानी कर रही थी लेकिन रोटी पानी तो नहीं है ना। अब कौम मूसा के पास आई और चलते चलते प्यास लगी, कहा कि क्या करें, अब वहां पानी कहाँ मिलेगा। अब यहाँ देखिए मिरेकल्स, यहाँ हमारे लिए एक अकीदे की बात है, बंदा सहराओं में भी पहुंच जाए, जिंदगी का सहरा ले आप, छोड़ें दूसरे डेजर्ट हमने कहाँ देखे, आपकी जिंदगी सहरा वाली कैफियत में भी आ चुकी है, कोई दरवाजा खुला नहीं दिख रहा, सब साथ छोड़ के तन्हा, तन तन्हा, कोई असबाब भी नहीं है, नो मीन्स एट ऑल, ना वहां कोई पानी की पाइपें, ना वहां कोई वासा की कोई कंपनी, कोई वहां मोटर, कोई बिजली, कोई मीन्स थे कि एक सहरा में पानी आए। आप अपने आप को सहरा में ले जाएं, कभी गए हो तो आप याद करें, कोई मीन नहीं होते। और आपको पता है कि सहरा में जब कोई अपने काफले से बिछड़ता है ना, तो लोग बस उस पर इन्ना लीला पढ़ लेते हैं कि अब ये तो भटकता भटकता उतने दिन जिंदा रहेगा जितने दिन बस इसके पास पेट में पानी है, और आखिर में मर जाएगा। और आपको वाकई मैंने उस दिन भी फ्राइडे के लेक्चर में भी सुनाया है कि एक बादशाह जब किसी सहरा में भटक गया तो प्यासा इतना था कि जुबान मुंह में आ रही थी, तो आखिर एक जगह कोठरी को देखी और उनसे कहा कि सिर्फ मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो उसने कहा कि पानी के बदले में मुझे क्या दोगे, कहा मैं तुम्हें अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा। इंसान इतना प्यासा होता है, कहा अच्छा पी लो, पी लिया, जब थोड़ी देर गुजरी तो अब जरूरत थी जिसम से हाजत हो, यूरिनेशन की हाजत हुई, कहा आप मुझे थोड़ी इसकी क्या कीमत दोगे, कहा मैं अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। उस पे उस कोठरी में झोंपड़ी वाले शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी पूरी बादशाही की कीमत पानी का एक गिलास, पहले पीने के लिए आधा आपने दे दिया, अब जिस्म से निकालने के लिए आधा दे दिया। इस पे इंसान गौर करके देखे तो अल्लाह की कितनी नेमतें। सहरा में मूसा कौन है, मींस कोई नहीं, मूसा ये ने क्या कहा, पागल हो पानी मांगते हो, मैं कहां से लाऊं, कोई नहीं है मेरे पास। आज आप देखिए जितने लोग माली परेशानियों का शिकार होते हैं वो इस आयत पे गौर करें, कोई मींस नहीं, लेकिन मूसा का अल्लाह पे यकीन देखिए, ए दरिब मारो, मार दिया। क्या अल्लाह ताला वैसे ही वहां पानी का एक चश्मा नहीं निकाल सकते थे जैसे पहाड़ों में निकाला, निकाल सकते थे, लेकिन यहां से हमारे लिए अमल के नुक्ते हैं वो नोट कीजिए। पहली बात देखिए कि मूसा ने मांगा तो अल्लाह से ही मांगा, इज इस तस्का, मांगना रब से है, कोई पीर, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई करनी वाला, कोई मुश्किल कुशा वहां नहीं पहुंचा। नबियों से आप पूरे कुरान में अकीदा सीखते जाएंगे कि जब भी मांगो तो रब से मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए बेटे, जिस जब भी मांगो तो सिर्फ रब से मांगो। हजरत इब्ने अब्बास छोटी उम्र के थे तो आप अक्सर उनको बड़ी प्यारी नसीहतें करते थे, कभी आपके कंधे पे हाथ रख लेते, कभी वो आपकी ऊंटनी कि नुकेल पकड़े होते हैं तो आप साथ साथ, ऐ बच्चे, ऐ मेरे बेटे, यंग लड़के टीनेजर को कहते हैं कि जब मांगो रब से मांगो। अब वहां कौन मांगेगा रब से, जिसको रब से मांगने की आदत है, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि मांगा रब से लेकिन साथ ही फिर ए दरिब अमल भी किया। इससे अमल की बात क्या पता चलती है कि दुआ मांगकर हाथ तोड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसे आज हम अपनी उम्मत और अपने मुल्क के लिए खैर मांगते हैं ना, वहां भी तो अब जरूरत है ना पानियों की और खैर की, चश्मों की, तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते वह इज तस्का मूसा लि कौमी, अपनी कौम के लिए मांगा। यहां से क्या पता चलता है कि इनफरादी नेमते नहीं मांगनी, इज्तमाई मांगी है। हमारा हाल ये कि हमारे घर में कोई 2 हफ्ते की ग्रोसरी जमा हो जाए तो हम खुश हैं। मैंने ऐसे मंजर देखे, हम जब ह्यूस्टन में थे तो वहां एक दफा एक न्यूज थी कि हरिकेन आ रहा है, लोगों ने इतनी ग्रोसरी अपने घरों में भर ली कि ग्रोसरी स्टोर खाली हो गए, इतनी गैस लेके अपने घरों में रख दी कि गैस स्टेशन खत्म हो गए। बाद में वो जो खराब खाना घर में था उसकी वजह से कितने दिन सड़ांध आती रही घरों में और कचरे के ढेरों पे, लेकिन क्या ख्याल था, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैंने लेना है। लीडर ली कौम ही, ये नहीं हो सकता कि कौम भूखी और लीडर पेट भर के खाए, ये नहीं हो सकता कि उनके घरों में तो इतने खाने पीने और कौम के लोग जो है वो जमीन अपने पे लगे हों। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपका पेट भरा हो और आपके नेबर खाली बैठे हो। ये मिजाज है कौमों के। आज पूरे सबक में हम ये मकासिद नोट कर रहे हैं कि आजाद कौमें गुलाम क्यों बनती हैं। साथ साथ एक साइड का हाशिया लिखा के नीचे पाकिस्तान के नाम के साथ अपने हालात भी लिखते जाएं। हम भी तो आजाद हैं। आज हम जहनी गुलाम क्यों हैं? आज हमारी सोच गुलाम क्यों है? क्योंकि आज हमारे अंदर से लीडरशिप चली गई। वल्लाह ही कौम बड़ी खूबसूरत है हमारी, सिर्फ एक लीडर की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर्स आपको सियासी तौर पे दिखते भी हैं। मत सोचिए कि हर सियासतदान बुरा है। यदि नाम लेने की हमारी पॉलिसी नहीं है, वरना थोड़ा बहुत जितना को मैं जानती हूँ कुछ इस वक्त बड़े मुखलिसीन है जो मुल्क की कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, इसकी हिफाजत की, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? उसकी वजह यह कि अभी वो खुद भी कुरान से नहीं जुड़े हुए। उनके अंदर कौम का दर्द तो बहुत है, लेकिन वो उस दर्द की दवा नहीं ले पा रहे। इस तरह के हालात उन लोगों के दिलों में आते हैं। उनको ये तो समझ आ रही है कि मुल्क के साथ खराबी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि अपने मुल्क की इसलाह कैसे करें। एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट मुझे मिला, मैं इतनी खुश हुई उसको पढ़ने के बाद, यानी ये लास्ट क्लास के बाद ही। नॉर्वे की हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपने वाक जो बातें लिखी हैं, मैं खुश होगी पढ़ के। जो इंग्लिश में काफी लंबी इनकी ईमेल थी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ब्लॉग के ऊपर। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में दुखी महसूस करती थी, लेकिन इसमें मेरे दिल में एक चीज थी, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। ये परसों के सबक में, यानी जो लास्ट सबक है उसके बारे में लिखती हैं कि जब आपने पाकिस्तान का अरबिक लफ्ज के साथ मदीना तैयबा से टैली किया तो एकदम जैसे मेरी आंखें खुली। और उसके ऊपर फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी और मैंने वाकई में अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन मुझे कल की तफसीर से ये समझ आई है कि अब हमारे मुल्क का हल क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह लिख लें, वही अल्लामा इकबाल का शेर आज भी पूरा होने का वक्त आ गया है कि जिसमें वो कहते हैं कि औरत उठ कुरान को पकड़, कि तेरे कुरान पढ़ने ने उमर के दिल की हालत को दगरदूं कर दिया था। फारसी का शेर है। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा था तो उमर मुसलमान हुए थे ना, तो वो कहते हैं कि उम्मते मुस्लिमा की औरत है, माँ है, बहन बेटी, उठ कुरान पढ़ और अपने घरों में अब सुना, तेरे कुरान पढ़ने से उम्र का दिल बदला था। इंशाल्लाह आज हम पूरा, मैं कहती हूँ आज का सबक ही पाकिस्तान के नाम कर देना तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुल्क की हालत भी बदलेगी, और अब बदलनी शुरू हो रही है कब से, जब से औरतों के हाथों में कुरान आ गए। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया, कौन सी नेमत है दुनिया की जो हमारे मुल्क में आज नहीं है? आप हैरान होके रहेंगे, ये जो इतनी दुश्मनों की नजरें हैं वो क्यों हैं? बेवकूफ तो नहीं होता दुश्मन। खबरें तो हम पीछे उनकी सुन चुके हैं कि जीनियस कितने हैं। उनको पता है कि ये सोने की चिड़िया है, बुलबुल है। एक पूरी वीडियो हमारे पास, किसी वक्त आपको यहाँ दिखाएंगे अगर आपके नसीब में हुआ, और उसमें पूरी हिस्ट्री है बरेस्गीर पाक को हिंद की, उर्दू में है। वो मजे की बात सबसे कि इसको एक वक्त था कि बरेसगीर पाको हिंद को बुलबुल कहा करते थे, सोने की बुलबुल। लेकिन इसीलिए तो दुश्मनों की नजरें हैं। कहां से ये उठ के लोग यहां से वहां क्यों गए? वहां की मट्टी और मक्खियां लेने? उनको पता है वहां खैर है। आज भी वो एक इतना बड़ा हब है कि अल्लाह ना करे अगर हमारे मुल्क पे दुश्मनों का कब्जा हो जाए, ये सब ईरान इराक ये सब गोल पट्टी सारी उनकी हो जाती है। ये एक डोर है, एक दरवाजा है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया हुआ इस वक्त, और इसके अंदर खैर बहुत है। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम क्यों परेशान हो गई कि वो आज इनको इन चीजों से सबक नहीं ले रही? अभी सिर्फ इज्जत तस्का मूसा अली कौम ही पे पहुंचे हुए हम लोग, आगे कितने सबक आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिल्कुल है, बिल्कुल कटने वाले मरने वाले साथी जो होते हैं ना, ये कौमों का नसीब बनाते हैं। मुझे एक और भी बड़ा खूबसूरत कमेंट इस वीक में मिला, बहुत ही खुशियां मिली। एक साथी थी हमारी, वो अमेरिका से नॉर्वे गई हुई थी, तो ख्वाहिश होती है जैसे आपकी भी दिल में मोहब्बत होगी, उनके भी थी, तो वो देखना चाहती थी, तो वो देख के आई, मिल के आई, तो मुझे उन्होंने ईमेल में जो लिखा वो सारी ईमेल तो छोड़ दे, जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत जुमला उनका था, वो कहती कि मुझे वहां जाके ये वो लगा, लेकिन मुझे वहां लगी वो क्या लगी, बेलॉस और वर्थलेसली काम करने वाले साथी। ये आपके पास इतने खूबसूरत साथी हैं, वो यानी उन उनके जुमले जो भी थे उसके अंदर है कि इंसानों से नसीब बनते हैं, ये लकड़ी की दीवारें, मिट्टी की, चूने की, सोने की कुछ भी नहीं है, लोग पैदा करने हैं। अगर आपको उम्मत बनानी है ना, तो आपको नेशन पैदा करनी पड़ेगी, कुछ को डिमोलिश करके और कुछ को रेनोवेट करके। ली कौम ही, कौम का दर्द पैदा किया तो फिर हुआ, अकेले होते कहते अल्लाह मैं प्यासा हूं, मैं मर गया, मैं लीडर हूं, तो फिर इस कौम का क्या होगा, तो मुझे ही पानी का एक गिलास पिला दे, और उनका ख्याल होता कि अल्लाह इतना तो दे ही नहीं सकता, आपको तो लाखों में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा दे। नहीं, उनको अल्लाह के ऊपर यकीन था। यहां से एक और नुकता नोट कीजिए कि मूसा को अल्लाह के खजानों में यकीन था कि अल्लाह की जात सारी कौम को भी पिला सकती है। हम कहते हैं अल्लाह चलो ये नहीं थोड़ा ही दे दे, यानी बहुत ही मुझे हंसी भी आती है बाद सफा कुछ लोगों की सोच पे, क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा अल्लाह मेरे नसीब में बेटा नहीं तो बेटी ही दे दे। तो कभी किसी ने कहा ना, तो मैंने कहा कि क्या मतलब है, अल्लाह के पास बेटों की कमी है, यानी हम थोड़े पे राजी हो जाते हैं। मैंने कहा मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं क्या कहती कि अल्लाह मुझे एक नहीं मुझे दो बेटे इकट्ठे दे, मुझे पता है तेरे पास खजाने हैं। तो जो थोड़े दिल वाले, छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अल्लाह के पास इतना है ही नहीं, नाउजु बिल्ला, चलो अल्लाह मुझे ही दे दे। नहीं, ली कौम ही, अल्लाह मुझे पूरी कौम के लिए चाहिए। जब इस तरह तड़पने वाले लीडर उम्मत मुस्लिमा को मिलेंगे ना, फिर देखिए नसीब जागेगा। दो तरह के लीडर्स की बड़ी जरूरत है हमें आज इस काम के लिए, एक दीनी रहनुमा और एक दुनियावी रहनुमा। अपने लिए लिख लें कि दीन के लिए भी जब ऐसे तड़पने वाले लोग हमें मिलेंगे ना, और माशाल्लाह बहुत है, हमारा किसी से सामना हुआ कि नहीं हुआ ये हमारा नसीब है, लेकिन ऐसे लोग बहुत है कि जो वाकई अपनी कौम का दर्द रखते हैं और उनको पता है कि हमने अपनी कौम के लिए खैर मांगनी है। और दूसरी किस्म के लीडर हमें चाहिए, दुनियावी लीडर, जिसको सियासी कौमी हीरोज कह लें। जब लोग लेने वाले की बजाय देने वाले बनेंगे ना, तो फिर उम्मत में बड़ी खैर आएगी। खैर, अल्लाह ताला ने से मूसा ने मांगा, कहा ठीक है, इदरिब बियसाकल हजर, पत्थर पे मारो। यहां से असबाब को इस्तेमाल करने की तरफ भी इशारा है, ये नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, टू यूज असबाब। मूसा बैठ के दुआ करते, अल्लाह ताला बारिश दे देता, लेकिन बारिश नहीं हुई। यहां से एक और नुक्ता नोट कीजिए, मूसा अलैहि सलाम कहते अल्लाह ताला पानी चाहिए, आसमान से बारिश उतरती, बारिश भी तो आ सकती थी ना, और उस बनी इसराइल को पिला देते, नुकसान क्या होता। गौर करें, सोचें, वक्त नहीं है बीच में इतनी शेयरिंग का, मेरा दिल बहुत चाहता है मैं इस तफसीर के बीच में भी आपसे बातें लूं, लेकिन आप जितना अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आगे जाके मैं आपसे तफसीर में भी पूछूंगी, क्योंकि फिर मुझे पता होगा कि आप बिल्कुल नुक्ते की बात करेंगे, और अगर आप इधर हैंकी हैंकी करेंगे ना, तो फिर बात मुझे समझ नहीं आएगी। जी
बारिश तो रुक जानी थी, और ये जो
शाबाश,
चश्मे की है तो चश्मों के आगे जो उन्होंने फिर फल भी मांग
चला,
लिया।
इन्होंने अच्छी बात कही। और भी जिन में आ रहा है कि बारिश की जगह चश्मों से क्यों पानी आया। जी आप प्लीज
चश्मे और बारह चश्मे के जरा लोग ऑर्गेनाइज भी हैं।
ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है जी, पीछे से आप फरहत।
मुझे जो समझ आया, मेरे ख्याल से चश्मों का पानी ज्यादा देर तक रहता है जबकि बारिश का पानी बह जाता है।
ठीक है, शाबाश, सारी बातें बिल्कुल ठीक है। नंबर आप देखिए कि अगर बारिश होती तो वो वन टाइम होती, हो सकता है कि बारिश का पानी इतना ज्यादा होता कि फायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाता, फिर दोबारा प्यास लगती, क्या होता। इनको अल्लाह ताला ने चश्मे से दिया, और रिवायात में आता है इसके बारे में बहुत सारी बनी इसराइली रिवायतें हैं कि ये एक चकोर किस्म का, ऐसे क्यूबिक किस्म का छोटा सा पत्थर था। हमारे जहन में क्या था, बहुत बड़ा पत्थर होगा तभी इसमें से पानी निकला है, बिल्कुल जैसे कभी आपने घरों में ये छोटा सा मॉडल नहीं काबा का बना हुआ दिखा होता है, चंद मे बी हैंडफुल, यानी माइट बी 7 इंच से 7 इंच, छोटा सा पत्थर था एक, बस अल्लाह ताला ने उसको इस्तियारे के लिए रखा हुआ था, और कहते हैं कि वो चकोर था, और उसमें से इस नता अशरत आईना 12 निकले। 12 क्यों निकले, क्योंकि कबीले उस वक्त तक बनी इसराइल के 12 थे। यहां से आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी कि जितने लोग हों अगर उतना इंतजाम हो तो काम बहुत अच्छा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को ग्रुप्स में बांटा हुआ था, और हर कबीले का एक एक बड़ा सरदार भी था, आप कह ले कि 12 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप का एक ग्रुप इंचार्ज भी था, और उनको अल्लाह हुई। यहां से आपको ये पता चलता है कि किसी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए लाजमी है कि वहां जितने लोग रहते हैं उनके लिए पहले बेसिक रिसोर्सेस बनाए जाए। खाना पीना जिस कौम को नहीं मिल रहा होगा और भूख से लोग खुदकुशियां करते फिरेंगे, उनको क्या लगे आपके वेपन से, और उनको क्या लगे आपकी बड़ी इमारतों से और आपकी यादगारों से और आपके बुलंदोबाला महल्लात और जहाजों और कश्तियों से, उनको कोई परवाह नहीं कि आपने इस मुल्क में कितने होटल बनाए, वो कहते हैं हमें दाल रोटी दे दो, वही बहुत है। तो यहां से पता चलता है कि लोगों को उनकी जरूरियात मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पत्थर में से पानी कैसे निकल सकता है। ये वो लोग होते हैं जो मौजजात का इनकार करते हैं, तो उनको सूरत बकरा की आयत 74 जाके पढ़ा दीजिए, जो आगे ही हमारे सबक पे आने वाली है इंशाल्लाह, के वाइन मिनल हिजार तिलिमा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में तो कुछ ऐसे हैं कि उनसे नहरें फूट पड़ती हैं। आज भी आप देखिए जो पानी वो निकलते हैं वो कहाँ से, आपको ही इलाकों जाने का मौका मिलेगा। मेरे कैमरे में कई ऐसी तस्वीरें हैं कि जो वॉक के दौरान हमने नॉर्वे के ऐसे पहाड़ों में ली हुई हैं, कि एक ऐसी जगह पे हम एक दिन खड़े थे, मैंने उसी वक्त अपनी अम्मी को फोन किया, ऐसी फारिग भी थी, और मैंने कहा उनसे शेयर करती हूँ। यकीन करें कि जिस जगह पहाड़ी पे मैं खड़ी थी उसके नीचे एक ऐसा इतना बड़ा चश्मा था कि बिल्कुल नहर की तरह बह रहा था, और बाकी तीन चार तरफ पानी था। मुझे कहने लगी इतनी आवाज क्यों आ रही है बाहर, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ चश्मा में से चश्मे जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें ये दिए, तुम्हें अल्लाह आखरत में भी दे दे, यानी मुझे उनकी दुआएं भी मिल गईं। तो क्या हमने कभी पत्थरों से पानी निकलता नहीं देखा? कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उस पे असा मारते थे, तो इस तरह और हर कबीला, जैसे छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, उनके साय से कदालिमा कुल्लू ना से मशरबा, हर गिरोह ने अपना हिस्सा पहचान लिया। जो थोड़े लोग थे उधर पानी का फ्लो कम था, जो ज्यादा थे उधर ज्यादा था। ये नहीं कहानी हमें सबको बड़ा ही चाहिए, हमारा हाल तो यही है ना, ले लेते हैं इकट्ठा प्लेटों में, प्लेटें भर के, चाहे खाया जाए ना खाया जाए, लेना जरूर है क्योंकि फ्री मिल रहा है। नुकसान क्या होता है कि चीज जाया होती है। तो अल्लाह ताला ने इधर से ये हम सबको बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की और अल्लाह ने वो पानी दे दिया, और कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मेरे रिस्क अल्लाह के रिस्क से। फिर देखिए मूसा के असा से पानी निकला, लेकिन रिस्क अल्लाह, मूसा के असा में भी तासीर कब होगी, जब अल्लाह चाहेगा। आप जाइए खूबसूरत से खूबसूरत स्टिक लेके, दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत पत्थर पे मारिए, पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह आप बाज़ दफ़ा बड़ी कोशिश करते हैं कि लोगों का दिल नरम हो जाए, मर्द नादा पे कलाम है दिल भरे बेअसर। अल्लाह ताला हमें ये बताता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से। हाँ, वला तअसु फिल अर्दि मुफ़सिदीन, जमीन में फसादी बनकर नहीं जीना, ये है असल बात। हमें क्या इससे सबक मिल रहा है? कीमतें पाने के बाद जो लोग नाशुक्री का रवैया अख्तियार करते हैं ना, उनकी सजा दुनिया में उनको मिलती है। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 7 में आता है, वइस्तअज़ना रब्बुकुम लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, और जब तुम्हारे रब ने तुमको पुकारा कि तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और मिलेगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ठीक है, दूसरे इस आयत के साथ हमारे अंदर एक सोच पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें आजादी की नेमत अता की। 14 अगस्त 1947, 1947, हर कौम को अपना आजादी का दिन बड़ा प्यारा होता है, हमें भी बड़ा प्यारा है, लेकिन क्या हमने इस नेमत को पाने के बाद इसका शुक्र अदा किया? वहां अल्लाह का कानून नाफिज किया, वहां से शर्क को खत्म किया, कौम को मेहनत की आदत डाली, सारे सहारों से बेनियाज करके अल्लाह पे नजरें लगाना सिखाया, अल्लाह से दुआ मांगना सिखाया। हम तो अभी तक दुआ मांगना नहीं सिखा सके कौम को। कई ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी एक ही बात है, वो कहती कि गांव से एक मासी काम करने आई, तो कोई बात हो रही थी तो मैं दुआ मांग रही, तो मैंने कहा दुआ मांगे, तो कहती पाजी दुआ तो मजार पे जाके मांगते हैं। यानी आज आपको पता है कि हमारी 70-80% कौम जो है उसका हाल यह है कि उसको ये यकीन है कि दुआ मांगने के लिए किसी कब्र पे जाना पड़ता है। तो इस तस्कार मूसा से हमने क्या सीखा? आगे चलते हैं क्योंकि अगले हिस्से से ये कुलू वशरबू पे आएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खाने और पीने का हुक्म तो दिया, और साथ ही क्या उसको एटिकेट्स होते, क्या अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे लिए इसका भी कुछ मामला रखा है? ठीक है, फिर आप देखिए कि इसमें पहली चीज यह है कि खाना जो है ना वो हलाल से खाना चाहिए, इबादत समझ के खाएं। कुलू अमर है, हुक्म है, जैसे कहा जाता है ना कुम फानजिर, खड़े हो जाओ और तबलीग करो, इसी तरह कहा जा रहा है कुलू, तो गोया कि खाना भी इबादत है। अपने हक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दूसरों का हिस्सा ना खाए, इतना ज्यादा ना खाए कि सुस्ती होने लगे, हराम तरीके से कमाया हुआ ना हो, इसराफ ना हो खाने पीने में, नुकसानदेह चीजें ना खाए कि सिर्फ टेस्ट के नाम पे खा ले बाद में पेट में दर्द हो, सुन्नत तरीके से खाए, खाने से पहले हाथ धोए, टॉवल यूज नहीं करना चाहिए हाथ धोने के बाद, फिर जूता उतार के खाना खाना चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। फिर आप देखिए कि एक खास तरीका अल्लाह के नबी ने सिखाया कि इस तरह बैठते थे आप, जैसे आप और मैं नमाज में तशहुद में बैठते हैं ना, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेफ्ट पाँव जो होता है ना, लेफ्ट साइड जो होती है वो यूं क्रुकेड होती है, और राइट फुट जो है ना वो सीधा ऐसे जैसे घुटना मोड़ के हम बैठते हैं। आप चाहें तो, मैं तो कई दिन से सोच ही रही हूँ, बल्कि इरम आप इसकी भी इंतजाम करें कि ब्रेक में आप लोग नीचे दस्तरखान बिछाया करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करके एक दो टेबल लगवा लेंगे राउंड जो ऊपर बैठ के खाने वाले हैं, बाकी हम सब बैठ के नीचे खाएं, मिलके खाना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और मैं आपको खुद बैठ के दिखाऊं कि उस तरह बैठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओवर ईटिंग नहीं होती। आपको लगता है पेट भर गया, क्योंकि पेट दबा होता है ना, जो ये आप खड़े होते हैं तो पेट में जगह बनती है। और माशाल्लाह जो स्टाइल हमारा खाना खाने के, आप जरा सोचे, हाँ डाइनिंग टेबल पे बैठे पेट और फूलता जाता है, और फूल जाए वो डाइनिंग टेबल से टच है, तो फिर उसके लिए बेल्टे बांध दे और उसके लिए खाने। आज भी सुन्नतों में रहमत है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर सर आप देखिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, खाने में दूसरे को शरीक करना चाहिए, बेहतरीन सदका खाने का सदका है, अगर आप इल्म के सदके के बाद कर सके। हिरस रखा करें। आप लोग जहाँ कैंटीन का खाना लेते हैं ना, आज आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। आपने एक ही खाना लेना था ना, आपके पास एक ही बंदे का अरेंज था, आप क्या करें, ए और बी, आप ए जो है ना वो बी के खाने के पे करें, बी जो है ए के खाने के पे करें, फायदा क्या होगा। मैंने खाना लेकर खुद खा लिया, मुझे फायदा हुआ ना, और अगर मैंने खाना लेकर आपको ले दिया तो आपने जो खाया आपको तो फायदा होगा, लेकिन मुझे भी तो फायदा होगा। मैं तो इस तरह एक मौके पे किसी को कहा, मैंने कहा मेरा दिल चाहता है कि हम मुसलमानों में इतनी यकजहती हो कि मेरे घर की ग्रोसरी का बिल मेरी दोस्त दे और दोस्त की ग्रोसरी का बिल मैं दूं। कहती खुदा के लिए ऐसा ना करे, अगर पता चल गया दोस्त को कि बिल उसने देना, उसने तो मेरा ला कट देना है। सच्ची बात है, हम इतने ज्यादा नेमतों को मिस यूज करते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं दूसरों के घर की ग्रोसरी का बिल दूं। मेरा दिल ख्वाहिश है, क्यों, कि मुझे मजा आएगा कि मेरे पैसे वो खर्च पड़ेंगे, मेरा खाना खा के अभी नमाज पढ़ेंगे। तो हमेशा इज्तमाइयत लाए, कट्टे फिटे ना रहे। आप घर में भी आप देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा अपना लंच शेयर करो, बेटा आप ये करो वो करो, शेयरिंग में बरकत है। ढूंढा करें कौन नहीं खा रहा, कौन किसने नहीं लिया, आप ले मैं ले, ये नहीं होता कि किसी के पास पैसे नहीं होते। आप यकीन करें, आप अकेले घर में आप सारा दिन खाने ही नहीं खाएंगे, कोई दूसरा आपसे पूछे रोटी बनाओ, चलो बनाओ खाते हैं, कितना मजा आता है। जब दूसरा आपसे पूछता आप बोलते चलो मैं भी खाती हूँ। तो हमेशा शेयरिंग के साथ स्टाइल रखें अपनी जिंदगी में खाने का। फिर इसके बाद बहुत ठंडा, बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस खाना होना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि मिलजुल कर खाएं, तीन उंगलियों से खाना चाहिए। ये जो तीन उंगलियां होती है ना, राइट हैंड की, बीच की बड़ी और इसके, नबी सल्लम इन तीन उंगलियों से खाते थे खाना। फिर इस तरह दाएं हाथ से खाएं, जरूरत पड़ते पे लेफ्ट हैंड खाए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाना दाएं से चाहिए। फिर बिल्कुल अपने सामने से खाएं, हाथ घुमाना, उधर से उठाना, उधर से उठाना, ये चीज, और ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है। मैं सोचती थी जो चीज इनके सामने होती है बस ये वही खाते हैं, लेकिन मुझे मुझे भी ये बात पता थी, इनको भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते नहीं मैं अपने आगे से खाता हूँ, तो जो चीज सामने होती है वही खा लेते हैं। मैं क्या, ये क्या करते हैं, पहले एक सारी चीज खा लेते हैं फिर सारी दूसरी खाएंगे, क्योंकि कुल भी यमीनिक व कुल, अपने सामने से खाओ, हदीस है कि सामने से खाओ, कुल मिम्मा यलीक व कुल भी यमीनिक, दाएं से खाओ और सामने से खाओ, सारी चीजें सामने आएंगे। और हम तो माशाल्लाह वो पहाड़ियां बना के खाते हैं ना। फिर एक वक्त में एक सालन, एक मीट, एक वक्त में आपके पास दो मीट नहीं होते थे, इसको मैं कहती हूँ अगर आम कर दें ना हमारी शादियों में कितनी बरकत आ जाए। आपके घर की दावत है ना, आप अपनी दोस्तों की दावत करके बता दें, यानी सिर्फ चिकन होगा, अगली दावत जो करूंगी उसमें सिर्फ फिश होगी, उसे अगली में सिर्फ मीट होगा। हम तो पहले पूछते हैं, अच्छा चिकन की डिश ये हो गई, रिजवाना जी मैं ठीक कह रही हूँ, चिकन की डिश ये हो गई, कीमे की ये हो गई, गोश्त की ये हो गई, मुर्गी की ये हो गई, यानी कोई मीट दुनिया का छोड़ना नहीं जो हमारे उस टेबल पे ना आ जाए। और फिर कहते हैं आप खाते नहीं, और खा लिया तो अगले दिन छुट्टी होगी, क्योंकि इतने मुख्तलिफ खाने पेट में ही रहे। तो मीट एक किस्म का यूज करें, अपने घर में भी यही आदत रखें, एक वक्त में दो किस्म के मीट ना हो ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि जरूरत का निकालें, बहुत ज्यादा ना निकालें जो कम हो जाए आपके, और खाना पड़े तो छुरी चमचे से भी खा सकते हैं जरूरत पड़े, लेकिन हाथ से खाने में बरकत भी और मजा भी बहुत है। लुकमा गिर जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, लोग कहेंगे लोग कंजूस हैं, अपने हाथ से खाना गिरता है हम नहीं खाते, आपको पता है कि शैतान हाथ मार देता है उस खाने में जिसमें बरकत होती है, पकड़े बिस्मिल्ला पढ़ के खा लें। कहा जब तुम बिस्मिल्ला कहते हो तो शैतान बिल्कुल मक्खी की तरह के पीछे हो जाता है कि इसने मेरी बरकत को, मैंने सोचा था इससे बरकत चली जाए लेकिन इसने ले लिया। फिर आप देखिए कि कम खाना चाहिए। हदीस में आता है कि मोमिन एक आंत में खाता है, काफिर 7 आंतों से खाता है। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास जब आया तो वो काफिर था, तो एक बकरी का, दो का, तीन बकरियों का दूध पी गया फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। जब मुसलमान हुआ तो आपने उसको दूध पिलाया। मोमिन कम खाने से पेट भरता है उसका। और आप देख लें, आप कहते हैं लोग थोड़ा खाते हैं लेकिन वो हर वक्त खाते हैं, ये स्टाइल अच्छा नहीं होता। चलते फिरते खाना नहीं खाना चाहिए। सब साथ मिलकर खाना खा रहे हो तो आखिर तक सबका साथ है, चाहे ऐसे ही बैठे रहे। ये बड़ी बुरी बात होती है, मेहमान बैठा रहा बर्तन समेटना शुरू, कुछ को तो हर वक्त चल ही पड़ा रहता है। हलचलियां मची होती हैं, नहीं वो सफा करे, वो मासी चली जाएगी, नहीं वो भी मैंने मशीन में लगाने। रिलैक्स, मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर मक्खी गिर गई खाने में तो क्या करें, पूरी मक्खी को डिप करके निकाल के खाना खा सकते हैं। हमारे पास वो है इतना, हमारे तो मक्खियां नहीं होती इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। पाकिस्तान वाले इसके ऊपर गौर कर ले। हाँ, फिर इस तरह देखिए कि खाने के बाद जो है उंगलियों से चाटना, ये भी सुन्नत है। आज आप चाट सकते हैं, आप बैठे हो पीसी के किसी बड़े हॉल में और आप खाने उंगलियां चाटे, कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। हाँ, वो अगर इलिजबेथ टेलर चाटने लगेगी तो सब चाटेंगे, पता चल जाए वो क्या नाम है, डायना चाटती थी तो आप भी चाट लेंगे। लेकिन नबी की बात सुनने नहीं। मुझे किसी का कमेंट नहीं भूलता, कहती आप मेरी, जब पता नहीं लोग कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरी शादी हुई होगी, नहीं नहीं तो उसके बाद किसी ने मुझे देखा होगा, तो कहती आपको मुझे वो इस तरह पहने ओढ़े देकर साथ आपने उंगली हाथ से खाना खा रही थी, यानी मैं चावल हाथ से खाती हूँ मुझे अच्छे लगता है। तो कहती मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता था मंजर के, यानी मेरे जहन में कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा भी किया जा सकता है। यानी बहुत दफा लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं ना। बहरहाल, इसके बाद आप देखिए कि खाने के शुरू में थोड़ा सा पानी पी ले, बीच में आपको डॉक्टर प्रूफ करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुली करनी चाहिए खाने के बाद, माउथ वॉश से कर लें तो एक्सीलेंट है, ब्रश कर लें तो और ही सोने पे सुहागा है। और दुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें खाना दिया, डिकार पसंदीदा नहीं है। दांतों का खिलाल भी कर लेना चाहिए, जैसे दो दांतों के बीच में कुछ ना कुछ फंस जाता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कह दी कि तुम वला तासो फिल अर्दी मुफसिदीन, आपने लफ्ज तासो पे गौर किया था कि ग्रामर की वजाहत में, असयौसो ऊन का कीड़ा, इस तरह से वो खराबी पैदा कर देते हैं, हमें मिलता ही नहीं है कि कहाँ है वो। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह का फसाद फैलाते हैं कि पता नहीं चलता। कुछ तो मशहूर हो जाते हैं ना फसादी लोग, कुछ बड़े घुन्ने होते हैं, ऊपर से बड़े मीठे होते हैं। अच्छा सुनाना, क्या कर रही है आजकल? अच्छा कोर्स कर रहे? अच्छा वहां क्या हो रहा है? ओ अच्छा, 4 घंटे, तौबा तौबा। अच्छा फ्री होगा ना? नहीं कुछ। अच्छा बुक ओज, बस वो बगैर गैर महसूस तरीके से अस्सा वाला काम कर जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन उन्होंने आपका दिल खट्टा कर दिया जिसकी वजह से आज आपकी आंख ही नहीं खुल रही और आप घर बैठ गए और आपको मुश्किल लगा। तो याद रखिए कि यहाँ खाने के बाद फसाद का जिक्र क्यों आया है, तो इसका भी मतलब नोट कर लीजिए कि खाना खाने से ताकत मिलती है। अल्लाह खाने से मना नहीं करता, खूब खाओ पियो, लेकिन उस एनर्जी को नेक कामों में इस्तेमाल करो। जब खाने से एनर्जी ली, ये है फसाद, लिख ले। खूब अच्छा खाए, खूब अच्छा पहने और खूब अच्छे काम करें। जब नुकसान क्या है, नुकसान कब होगा? जब खाना खूब अच्छा खाएं और उससे नाफरमानी करें। और मुहासबा मैं और आप खुद कर सकते हैं, हमारा आम दिनों का खाना और हमारे आम दिनों की रूटीन कैसी अच्छी होती है। माशाल्लाह, नमाज भी वक्त पे, दुआएं भी पढ़ ली, और जिस दिन शादी का खाना और दावत का खाना और वलीमे का खाना और मेहंदी और उबटन का खाना, उसके बाद क्या है? तो आज लिख ले, फसाद क्या है? अल्लाह का रिस्क खाकर उसकी नाफरमानी करना। अब देखिए, अमूमन 4 वजूहात होती हैं फसाद की। नंबर एक, नाशुक्री, पता ही नहीं है किसने दिया है। एक वक्त खाना बंद हो जाए ना, आंखें निकल आती हैं बाहर। नाशुक्री का इलाज सिखाया गया शुक्रगुजारी से। दूसरी वजह होती है बेसब्री, थोड़ दिला, हाय मेरी प्लेट को ले ना ले, लाइन में लगे, कभी देखा करे। उम्मत का कल्चर देखना है ना, तो खाना खोले तो फिर देखे, शादियों के मौके पे जो होता है ऐसे लगता है कि शायद मैं बाद में गई तो मेरे हिस्से की बोटी नहीं रहनी, बेसब्री है। इसका इलाज सब्र से अल्लाह में देता है। तीसरी एक वजह होती है तकब्बुर, बड़े बने जी, बच्चे की शादी है, अब क्या छोटे घर का थोड़ा मामला है। तो अल्लाह हमें इलाज सिखाता है आजजी में, आजजी ले आओ। चौथी वजह होती है हिर्स, बहुत ज्यादा लालच है, तो इसका इलाज है कनात में। ये चार देंगे तो इंशाल्लाह फायदा। आयत पे चलते हैं, अब आपको कुछ मजीद रवैये दिखेंगे कौमों के जो हमें इसमें दिखते हैं, और वो क्या, आयत नंबर 61, वइस कुल्तुम, और जब तुमने कहा, किसने कहा, बनी इसराइल ने कहा। आप जरा कौम का मिजाज भी यहां से देखेंगे हम सब। तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, हाईलाइट कर ले, किसको बुला रहे हैं, नबी, लीडर, टीचर, तीनों तीनों रुतबे थे ना मूसा के पास, और मूसा को बुला कैसे रहे, ए मूसा। ये है जाहिल कौमों का मिजाज के बड़े लोगों का नाम लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कभी आपको मुंह पे बैठकर या मोहम्मद नहीं कहा, कहना होता था तो बड़े प्यार से या रसूलुल्लाह कहते थे। कोई बद्दू देहाती आता था ना दूर से, जिसको इतने मैनर्स और एटिकेट्स नहीं थे, तो वो आके कहा करता था कि या मोहम्मद उखरुज अलैना, ए मोहम्मद निकल। सूरह हुजरात में आयतें नाजिल हो गई कि कैसी बात करते हो, नबी को इस तरह बुलाते हो जैसे खुद को बुलाते हो। आज उम्मत मुस्लिमा ने भी ये गुस्ताखी कर दी या मोहम्मद कह के। तसल्ली नहीं होती कुछ लोगों की जब तक या अल्लाह के फ्रेम के साथ दूसरी तरफ या मोहम्मद का ना लगा दें, नऊज़ु बिल्ला। एक तो गुस्ताखी, बदतमीजी, दूसरी बात आप देखिए कि नबी का नाम, आप कभी अपने बाप का नाम लेते हैं, अपनी माँ का नाम लेते हैं, उस्ताद का नाम लेते हैं, नहीं लेते, तो नबी का नाम लेंगे, हैरत की बात है। ये एक मिजाज है। आगे वाहिद, हम नहीं सबर कर सकते एक ही तरह के खाने पे, ये रोज रोज एक ही तरह का खाना हमसे नहीं खाया जा रहा। अच्छा करो क्या, फदू लना रब्बा का, यहां भी दो बातें नोट कीजिएगा इतने से हिस्से में, तू पुकार, तू दुआ मांग हमसे, अपने रब से, हमारे लिए अपने रब से। पहली बात देखिए कि जवाल जुदा कौमें दुआ भी खुद नहीं मांगती, मौलवी साहब को बुलाओ जी दुआ करानी है। आज अमूमन देखिए कई लोग हैं वो मौलवियों से क्यों नहीं बिगाड़ते, पता है आपको, इस वजह से नहीं बिगाड़ते कि फिर वो दुआ करानी पड़गी तो क्या करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, आप दिलचस्प इसलिए कि भूलपन होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाते तो हैं, क्लासेस वगैरह होती हैं बच्चों की, बड़ों की, लेकिन जाहिर है कि अभी भी कोई मस्जिद वाला मामला नहीं है हमारे पास 5 टाइम। वैसे तो एक मुसल्ला है जहां हम सब नमाज पढ़ते हैं मिलके नॉर्वे में भी, लेकिन अभी वो मस्जिद की जो सारी एक चीजें होती हैं कि भाई निकाह पढ़ाना और मरने पे नमाज जनाजा वगैरह, वो हमारे स्कूल में नहीं होती। तो एक साथी थी तो उन्होंने अपनी बात सुनाई कि वहां कुछ मेंबरशिप का चक्कर होता है, ये एक ऐसी कि हर बंदे को किसी का लीगली मेंबर बनना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उसके एंड पे मनी देती है। तो किसी मस्जिद से उन्होंने अपनी मेंबरशिप वगैरह ऐसी सोची कि वहां तो इतना शेर के, हम तो इतने साल से उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, अब कुरान पढ़े तो पता चला कि इस तरह की बातें हैं। तो फिर क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि मेरे मियाँ कह रहे थे कि जब अगर हम मर गए तो फिर हमारा जनाजा कौन लाते। यानी वहां हालात कुछ हद तक इस हद तक बिगड़े, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तबका ऐसा है कि वो कहते हैं कि अब जाओ फिर जनाजा भी उनसे ही पढ़वाओ जिनके तुम मेंबर हो, और तुम्हारे निकाह भी वही कराएं जिन्होंने ये कराना है। इस हद तक जब दीन के ऊपर इजारादारी बन जाती है ना, तो वो नुकसानदेह है। जिंदा कौमें अल्लाह से खुद मांगती हैं, मूसा ने खुद मांगा ना, और मुर्दा कौमें कहती हैं फदु लना रब्बा का, ए मूसा तू मंगवा अपने रब से। आज हमारा ये कल्चर है, कहते तीन मौकों पे मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है, बच्चा पैदा हो जाए तो अजान देने के लिए, शादी का दिन जब निकाह पढ़ाना है, और मरने का दिन जबकि दुनिया से जाना है। क्या मैं और आप दुआ नहीं मांग सकते अल्लाह से? आप देखिए दुआ कहाँ मांगी जाती है, जहां ताल्लुक होता है। आप में से जिसका जिसके से ज्यादा ताल्लुक होता है ना, आप कहते हैं मैं कहती हूँ, मैं मांग के देती हूँ, मुझे मना नहीं करते, नहीं मुझे पता है कैसे मांगना है, आप मांग लेते हैं। जब कौमों का अपना मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है कि ना नमाज है ना रोजा है, तो हकीकत है फिर दुआ मांगते हुए तो शर्म आएगी। तो यहां से अमल की बात लिखे, अल्लाह ताला से ताल्लुक तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़कर हम अपना नुकसान कर लें, और अल्लाह की बात जो है वो अल्लाह सुबहाना ताला से खुद मांगने की बजाय दूसरे दीनदारों पे इक्तफा करें। और यकीन करें कुछ लोगों का तो हाल बिल्कुल यही है कि वो दीनदारों से ही कहते हैं कि आप ही हमारे। खैर आगे चलते हैं, क्या आप लोग बताएंगे, आयत का टुकड़ा या मौजू बता दें जी, कहाँ आया था जी, पीछे से आप। शाबाश, फ़इल्लम तफ़लू वलन तफ़लू, कुरान के चैलेंज के मामले में था, ये वही है। तो लन क्या है? जबरदस्ती। लन नस्बिरा, अब देखिए जो लफ्ज़ है ना नस्बिरा, असल में नस्बिरु था, रा पे पेश होती है, लेकिन लन की वजह से इससे अगला लफ्ज उस पर जबर आ जाती है। ये सिर्फ बारीकियां देखें अरबी की, अभी इंजॉय करें कि आप पढ़ते हुए कह देंगे ना लन नस्बिरु तो कोई भी अरब हंस पड़ेगा। लन नस्बिरा, लन के बाद जो अगला फेल आता है ना उस पर हमेशा जबर आती है, ठीक है, और जोर भी पैदा होता है। और नेवर का मानी हम नहीं सबर कर सकते, कहा अला तामिम वाहिद, एक खाने पे। किधर इशारा है? पिछले सबक में आपने पढ़ा था मन और सलवा, तो क्या वो एक खाना था? दो थे ना, एक ही तरह का खाना मुराद है। रोज हम एक चीज नहीं खा सकते। ये बताइए कभी आपने ये जुमला सुना है अपने घर में? अम्मी रोज शलजम पका लेती हैं, अम्मी आप रोज करेले पका लेती हैं, फिर माँ कहती है बताओ आखिरी दफा कब पके थे। बच्चे और बड़े भी जो चीज नहीं खाते कहते आप ये रोज पका लेती हैं, और रोज उनको चाहे कभी हम पर्शियन फूड खाएंगे, कभी लेबनीज फूड खाएंगे, कभी अरबिक फूड खाएंगे, और फिर कभी पाकिस्तानी भी खा लेंगे। यहां से अब आपको रवैया दिखेगा। अल्लाह ताला ने इस कौम को एक बहुत बड़ा मकसद दिया था। क्या मकसद है इस वक्त इनके? खुद को वादी यतीम में ले जाके सोचे क्या मकसद था। जो तौरात नाजिल हो रही है उसको सीखो, अखज करो, और साथ ही जिहाद की तैयारी करो और जाके कौमे मालका से लड़ो जिहाद। कितना बड़ा मकसद है इनके पास। ये किसमें पड़ गए? लन नस्बिरा अला तामिम वाहिद। ये है वो बुनियादी नुक्ता जो आजाद कौमों को गुलाम बना देता है। अल्लाह ताला ने इनको एक बड़े काम के लिए रखा और कहा कि तुम ये काम करो, तुम्हारे काम मैं करता हूं। बिल्कुल उस माँ की तरह जो इम्तिहान के दिनों में बच्ची को खाना ट्रे में रख के उसके कमरे में देती है कि खाना तुम्हें मैं देती हूँ, तुम पढ़ो। अल्लाह ने उनको कहा कि तुम दुनिया में अल्लाह के काम करो, तुम्हें एक मकसद दिया जा रहा है, तुम पढ़ो, तुम अपने अच्छे अच्छे काम करो, और खाना तुम्हें मन और सलवा की सूरत में मिल गया। इन्होंने क्या किया? कहने लगे कि नहीं 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 हम नहीं खा सकते रोज एक किस्म का खाना। अच्छा फिर क्या करो? आगे मैन्यू भी इनका सुनिएगा। कहने लगे फदु लना रब्बका, पुकारो अपने रब को। यहां पहले नोट कीजिए लफ्ज रब्बका, ए मूसा तू अपने रब को पुकार। ये तो नहीं कहा कि रब्बाना हमारे रब को पुकार। ये है इनके ताल्लुक के टूटने की अलामत कि रब भी इनको अपना नहीं लगता। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि रब तो बस दीनदारों का है, हमारा तो नहीं है, तू रब से कह कि हमें ये दे दे। अच्छा जी फिर क्या करें? युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम बितुल अर्दू, जो जमीन में से निकले। नोट कीजिएगा, ना सिर्फ ये कहा कि ये खाना नहीं चाहिए जो मन और सलवा की सूरत में, बल्कि कहा दुआ भी तू मांग और वो खाना चाहिए जो जमीन से मिले। ये भी ना शुक्री की बात है ना, कहां से मिल रहा था? आसमान का प्योर फ्रेश क्लीन, ये जमीन के अंदर मट्टी मिला खाना लेना चाह रहे थे है। और साथ ही आप देखिए कि इनकी लिस्ट देखिएगा, मिन बकलीहा, बकल में से साग। आपने वजाहत सुनी है ना, अभी बकल उसको क्लिपन कर देते हैं ना साग को, गुच्छियां बन जाती हैं उससे, बकल आपको बकल याद कर लें। कहने लगे हमें साग दे दीजिए। अरबी में बकाल कहते हैं सब्जी बेचने वाले को, जो ग्रोसरी शॉप पे जो दुकान आदमी है ना सब्जी फरोश, उसको बकाल में जाने का इत्तफाक हुआ, तो बकाला कहते हैं ग्रोसरी स्टोर को, ये वही बकल है, बकाला। कहने लगे साग चाहिए। हा से क्या मुराद है इधर? नोट करें, बकलीहा, बकल तो हो गया साग, हा क्या है उसका, किसका? जमीन का। और जमीन अरबी में मुअन्नस है। अभी से नोट करते जाएंगे ना शायद की मक्खी तक जाएंगे, जितने सीगे आ रहे हैं ना अरब काम करने वाली चीजों के वो फीमेल्स हैं। पीछे बाउजा का लफ्ज पढ़ा था ना हमने, फीमेल है, बाउस मेल होता है। और आपको जो प्रेजेंटेशन दिखा है उससे भी पता चल गया था कि सारा काम जो भी हो रहा है वो फीमेल करती है। जमीन कितना कुछ देती है दुनिया में लोगों को, जमीन फीमेल है, शहद की मक्खी। आप फील करेंगे कि औरत जितनी प्रोडक्टिव होगी ना किसी कौम की, उतनी वो कौम पनपेगी। आपने वो जुमला सुना होगा, गालिबन शेक्सपियर का है या न्यूटन का है, किसका, कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौमें दूंगा, तुम मुझे, शेक्सपियर का है, तुम मुझे बताओ कि माँ कैसी है तो मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चा कैसा है। आज के दौर में अच्छी माँ नहीं है, वल्लाही नस्लें बहुत अच्छी हैं हमारी, बस इन बेचारों के नसीब ऐसे हैं कि इनकी माएँ बिजी बहुत हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स बहुत हैं, उनको अभी अपने आप को शेप अप करना है, उनको अभी जिकोजी में जाना है, उनको अभी पार्लर में जाना है, उनको मशीनों में रह के चर्बी घुलानी है, उनको अभी स्विमिंग करनी है, उनको अभी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने अपने आप को लेना है, और उनकी शॉपिंग की लिस्टें भी बड़ी लंबी हैं, और बच्चे फ्रिज में 4 दिन पुराना खाना गर्म करके रोते हुए खा लेते हैं, क्या करें अम्मा बिजी हैं, और उस अम्मा को कमाना भी बहुत है। याद रखिएगा ये बात सिर्फ हाँ पे हुई है, आप अपने और मेरे हाँ होने को सोचे। लोग कहते हैं औरतें क्या करने लग गई, कई लोग हैं आपको बिल्कुल इस वक्त एक बेकार काम करता हुआ सोचेंगे, ये क्या कोर्स का जिम्मा ले लिया, बेकार है, आप कहें ये नस्लों की परवरिश का काम है, जब औरतें भी आप जितनी औरतें यहां बैठी हैं, वल्ला ही अगर अल्लाह आपको एंड तक जमा दे और आपके साथ और भी लोग आ जाएं, क्या इस कम्युनिटी की थोड़ी सी हालत बदलेगी? इंशाल्लाह शहर की बदलेगी, मुल्क की बदलेगी, दुनिया की बदलेगी। जी आप फरत,
उस्ताद जी, मैं दो हफ्ते के पास में, तो मैं उनको ना दावत दे रही थी इधर आने के लिए, तो एक औरत ने एकदम दूसरी औरत की तरफ इशारा किया कि ये अवेलेबल, ये कर सकती है, तो मैंने बोला आप क्यों कर सकते, कहती मैं तो काम करती हूँ, ये तो सारा दिन ऐसे ही
हाँ जी, जो काम कर रहे हैं ना लोग उनके लिए बहुत मुतमिन, शी इज वर्किंग वुमेन, ये काम करती, उनको कोई ना कुछ कहे, काम करना भी अपनी जगह एक्सेप्टेबल है हमारी कम्युनिटी में, इधर काम करना औरतों का 100% एक्सेप्टेबल है, मर्दों ने, घर वालों ने, ससुराल ने, मैको ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि औरत काम करे, 100% किया हुआ है, बच्चियों का पढ़ना 10 10 15 15 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है। आप ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, घर से जाते हैं, लेते हैं, दिन में एक दफा जाएं या हफ्ते में जाएं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल है। आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज से लेने जाएं, राइड दें, दे, एक्सेप्टेबल है कि नहीं? ओनली एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे जालिम मुआशरों में, कि औरत इल्म के लिए निकले, आप कुरान खानियों के लिए निकले तो भी आप एक्सेप्टेबल, कोई नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल, कहेंगे अच्छे वापसी भी हो सकता है, खाना हमारे लिए भी आ जाए, एक्सेप्टेबल है। खत्मों पे जाएं, कुरान खानियों पे जाएं, मेहंदियों पे जाएं, एक्सेप्टेबल, उपटन पे जाएं, एक्सेप्टेबल, शादी में औरत रात को जाती हैं लड़कियां औरतें के नहीं, कई फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ औरतों के वुमेन गैदरिंग्स होती हैं, रात 12 12 एक एक बजे आते हैं वापस के नहीं, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? उस वक्त क्या होता है, 4 दिन की शादी चलती है, आज मेहंदी, कल उपटन, कल शादी, रुख्सती, परसों वलीमा, और अगर घर के मर्द नहीं चाहते तो 4 दिन वो घर में खुद ही खाना खाते हैं ना आपके बगैर, एक्सेप्टेबल है। आप 101 गम लिख लीजिए, आपके दिल के अंदर से फफोले फूटेंगे, हर चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहां दीन की बात है अनएक्सेप्टेबल, ना तो एक्सपेक्टेड है और ना एक्सेप्टेड है, और उसकी वजह से हम अपोलोजेटिक हैं, शर्मिंदा, दुखी, कभी काम नहीं करेंगे। आप में से सारे लोग झड़ जाएंगे जो अपने इस कोर्स पे अपोलोजेटिक हैं, लिख ले, अभी लिख ले, आप यहां इस वक्त मौजूद हैं, और अगर आपको गिल्ट लगा हुआ है ना कि मैं इधर क्यों, उधर मेरी जरूरत है घर में मियाँ को, यकीन करें आप, मैं, मेरी बात अल्लाह कभी पूरी ना करे, आप छोड़ देंगे, मैं आपको भी बता दूं, आप में से सारे आगे नहीं जाएंगे अनलेस ये कि आप पहले इसको एक्सेप्ट करें कि जो काम मैं कर रही हूं, ये जॉब, कॉम, फुला फुला हर चीज से बेहतर है। अल्लाह सुबहान तआला इन सबको में हमें यही सिखाता है कि उम्मत को सबर सिखाओ, कनात सिखाओ, पेशेंस सिखाओ। अल्लाह ताला इसराइल को अल्लाह क्या बना रहा था, वर्ल्ड लीडर, आगे आप पढ़ेंगे, अगर उस वक्त ये बैतुल मकदस को फतह कर लेते ना अपने, फौरन निकलते, पूरी दुनिया के ये बेताज बादशाह थे, आप कह लें कि ये सुपर पावर बन जाते, 40 साल तक इन्होंने उसको फतह ना करके अपना वो ऑनर खो दिया, दूसरे लोग इनकी जगह पे आ गए, फिर 40 साल में जब ये तबका सारा मरा, इनके बड़े बूढ़े खत्म हुए, उस सहरा में जाकर यही इनको ठोकरे खिलाकर इनकी नस्लों की परवरिश हुई, उनकी माइयत में फिर आगे गए। तो बाज दफा ये जो ठोकरे लगती है ना आजकल मुसलमानों को, ये बड़ी बड़ी खुशाइंद है, हमारे बच्चे अब हमारे जैसे नहीं है, हमने तो आंखें बंद करके कुरान पढ़ा और पढ़ के आ गए ना, लेकिन आज का बच्चा बगैर आंखें, ऐसे बगैर पढ़े नहीं पढ़ता, तो उसके लिए जरूरत है कि हम आज अपने आप को देखें कि अल्लाह क्या दे रहा है, और वो क्या दे रहे हैं कि बकलीहा व किस्साईहा, किस्सा को भी देख लें थोड़ा सा, ये क्या है, ककड़ी आप कह लें, सैलेट या कोई भी ऐसी चीज, बकल आपको बता दिया जिसमें तना ना हो, और किस्सा ककड़ी और खीरे, फूमीहा फूम थोम फोम, हाँ मिलता है ना, एक ही चीज है लहसुन। और अरबों की एक आदत है, लिख लें कहीं आपको फायदा देगी, सा होती है ना, सा सा जो है वो फा में बदल जाती है, जैसे यहाँ फूम ही है ना तो ये सोमी हा भी है, ठीक है। अगली चीज अदसी हा, अदस, अदसा क्या होता है, लेंटल, तो लेंटल सी लेंस है, मसूर को इंग्लिश में लेंटल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अदसे की शक्ल में होती है, ठीक है। और बसली हा प्याज को कहते हैं, बसल बसल, सब के साथ हा जो लगा ये मोनस का लगा है। काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, अब जरा सोचे मूसा के दिल पे क्या लग रहा होगा, कहा है मूसा, मूसा ने कहा क्या तुम वो बदलते हो जो अदना है उसके बदले जो खैर। यहाँ बहुत कुछ है बातें कहने और सुनने की, और वो क्या कि मूसा अलैहि सलाम ने उनको एहसास दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया और तुम क्या ले रहे हो। तस्तब्दिलून में क्या लफ्ज छुपा हुआ है, बदलना, तब्दीली, तुम बदलते हो, हाँ अल्लाजी हो, अदना का क्या रूट होगा, अभी सुना है आपने, दाल नून वो दनूब, ठीक है, करीब की चीज भी यानी जल्दी मिल जाती है, और हकीर की चीज के मानों में दुनिया का भी यही रूट है। बिल्लाजी उसके बदले में, तुम एक आला चीज को बदले में, मतलब क्या है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने मनोसलवा की गजा दी, तुम्हारे रब ने दी, सहरा में तुमको मिल रही थी। सवाल पैदा होता है कि मनोसलवा आला क्यों था, पहली बात देखिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से मिल रहा था, बगैर मेहनत के मिल रहा था, तीसरा नुकता ये कि फ्रेश था, फ्रीजर का निकला हुआ नहीं था, घटिया कितने दिन पुराना, हाँ पहले उसको डिफ्रॉस्ट करो, फिर उसकी मत मारो, चूल्हे पर डालो, कभी गर्म कभी, कोई थोड़ी देर गर्म ठंडा करता रहे ना तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है, उस मुर्गी का पता नहीं क्या हाल होता होगा जो पेट में जाती है हमारे गर्म ठंडी होके, कभी यकीन करे बस में हो तो मैं कभी भी फ्रोजन मीट ना खाऊं, और कभी ये पैस्चराइज दूध ना पियूं जो हमारे घरों में चलता है, बिल्कुल मत मार देते हम इन चीजों की। फ्रेश मिलता था, रात को इनके ऊपर उतरता, ये सुबह होते खा लेते, खत्म, अल्लाह की तरफ से मिल रहा था, ये आला था। और इन्होंने अदना मांगा क्या जमीन से, भूल गए कि आसमान से तो चीज देखे ना, अगर ऊपर से मैं कोई चीज गिराऊंगी तो यूं गिर जाएगी ना, बस आप ये देखिए ये पेपर है ना, अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ू खुद ही आ गया ना, बगैर मेहनत के मिल रहा है, अब इस कागज को आप ये देखे मैं नीचे से उठा के यूं करूं तो मुझे उठाना पड़ रहा है ना, ये भूल गए थे कि जमीन आसमान से तो खुद ही आ रहा है, जमीन से मिम्मा युखरिजु, कहा जो जमीन से निकले तो वो क्यों इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मूसा ने कहा कि तुम अल्लाह के बदले अदना ले रहे हो, क्या वाकई इन्होंने अल्लाह के बदले अदना मांगा था, कैसे, क्या आज हमारे पास भी कुछ ऐसी मिसालें हैं अल्लाह के बदले अदना मांगने की। हमें बनी इसराइल पे तो इस वक्त बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा अगर बनी इसराइल इनकार ना करते तो क्यामत तक के लोग मनोसलवा खाते। ये जो सारे ग्रोसरी स्टोर और खाना पकाना, आप फील कर सकते हैं ना कि आधे से ज्यादा वक्त तो गुजर जाता है किचन में ही, या समेट रहे होते हैं, या संभाल रहे होते हैं, या पका रहे होते हैं, फिर किचन फैल जाता है, अल्लाह के बंदे किचन फैल गया, दो लोगों ने चाय पी फिर किचन फैल गया। आप फील करें कि हमारी जिंदगी की मसरूफियात में 80% मसरूफियात खाने पीने के तले के, गंद भी तभी पड़ता है जब खाना पकता है या खाना खाते हैं, वॉशरूम की जरूरत क्यों है, जितना हमारे घरों में बर्तन आते हैं आप देखिए बर्तन, फिर जो हमारा ट्रैश होता है जो फेंकते हैं फालतू बर्तन, जो डिस्पोजेबल डिशेज है, खाना खाना खाना, आज दुनिया में आप देख सकते हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लाह ने हमें आखिरत के लिए पैदा किया था, नोट करें मिसालें, अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं पैदा किया था, हम आखिरत की फिक्र छोड़कर दुनिया की फिक्र करते हैं, ये है अल्लाह के बदले अदना। फिर दूसरी मिसाल, दीन के इल्म को छोड़कर दुनिया के इल्म के पीछे भागते हैं, कितने साल लगाते हैं हम दीन के दुनिया के इल्म पे, और एक साल अगर अल्लाह में मौका दे दे हम उस पर भी 10 दफा सोचते हैं कि क्या मैं ज्यादा तो नहीं टू मच हो गई थी, मैंने क्यों कहा, मैं क्यों हाँ की, फंस गई अब मैं हाँ करके। अल्लाह हमें इस वक्त के हजारों पाउंड्स दे सकता है 1 घंटे के, इसको छोड़कर 10 10 15 15 पाउंड की जॉब्स करना क्या अल्लाह को बदले में इतना नहीं है। یتنا کو لینا اور اعلیٰ کو چھوڑنا نہیں ہے. اعلیٰ اخلاق جو اللہ نے امت مسلمہ کو دی اس کو چھوڑ کر ادنا اخلاق پہ آنا کیا یہ اعلیٰ کے بدلے ادنا نہیں ہے؟ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے کی بجائے دنیاوی آرائش اور نمائش میں خرچ کرتے ہیں کیا یہ اعلیٰ اور عظیم؟ بلکہ میں پورے یقین اور فخر سے کہہ سکتی ہوں امت مسلمہ خاص طور پہ پاکستان کلچر والوں کی خوبی ہے کہ جتنے شوق سے یہ کھانے پہ پیسہ لگاتے ہیں شاید اتنے شوق سے یہ کسی چیز پہ لگاتے ہوں. اور نہ صرف یہ کہ خود کھاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. جو بندہ آپ کو کھانے پہ انسسٹ کرے نا آپ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستانی ہوگا. اور پاکستان میں بھی اللہ کے حکم سے اس کا تعلق پنجاب کے کسی جگہ سے ہوگا. کھاؤ اور کھاؤ, الٹا باندھو, پیٹ پہ باندھ لو, اتنا کھانا, ایک تو اپنے لیے پھر دوسروں. اور کھانے کا دسترخوان کا کشادہ ہونا سنت ہے, ناپ ناپ کے تول کے ڈالو پھر نکالو, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن شیئر کرنا چاہیے دوسروں سے. یہ نہیں کہ اب وہی باسی کر کر کے خود بھی کھاتے رہے اور بچوں کو بھی پھر رلائیں کہ اب یہی روز روز کھائیں گے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ ایک خاص حد تک تو کھانا پینا اچھا ہوتا ہے, لیکن جب کھانا پینا مقصد پہ غالب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد دیا. اب یہاں پہ آپ اللہ کا غصہ دیکھ لیں آیت پوری کر کے, پھر اس پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ موسیٰ نے کہا کہ اعلیٰ کے بدلے اتنا لیتے ہو, احبتوا مصر, اس اخبات کو نوٹ کریں. پہلے یہ کہاں گزرا آپ کے قرآن میں, کوئی یاد ہے آپ کو؟ جی خاص طور پہ جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. جی ارم, کل نحبت منہا جمیعا, آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا کہا؟ احبتوا. اور احبتوا کیا ہے؟ حبت یا احبتوا سے اوپر سے نیچا, بزاز کو اوپر سے نیچے گزرو. لیکن آپ لکھ لیں یہ ان کا احباط, ان کا زوال تھا. یہ ہے وہ لفظ جس پہ اس تھیم کو ہم نے سیٹ کیا کہ قومیں کیسے گرتی ہیں, یہ ان کا زوال ہے. سب نکل جاؤ, نظروں سے گر جاؤ, آنکھوں سے گر جاؤ, لوگوں کی سوچ سے نکل جاؤ. یہاں سے بنی اسرائیل کا تنزل شروع ہوتا ہے. زوال ہی زوال ہے. تم چٹھاروں کے رسیہ ہو گئے, تمہاری نظریں ٹیس پہ لگ گئیں. احبتوا, نکل جاؤ تم کدھر ہو, مصرن, کسی شہر میں. لفظ مصر تھوڑا سا پہلے بھی بات ہوئی تھی, المصر اور ہے اور خالی مصر اور ہے, یعنی نکرہ اور معرفہ کا فرق ہے, کامن اور پراپر کا فرق ہے. آپ یہ لکھ لیں کہ کسی شہر کی جب حد بندی ہو جاتی ہے نا باؤنڈریز کے, یہ یہاں سے لے یہاں, تو اس کو مصر کہتے ہیں. فَإِنَّ لَكُمْ, پس بے شک تمہارے لیے, مَا سَأَلْتُمْ, جو تم نے مانگا. ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے منہ پہ تماچا پڑ رہا ہے, جو مانگے اب بھگتو. جیسے ہم کہتے ہیں نا, جو کر مانگے نا مانگو لو اور کل میرے پاس نہ آنا. کبھی کوئی بچی ضد کرتی ہے نا, نہیں مجھے ادھر ہی شادی کرنی ہے, جیسا بھی ہو. اور اخیر ماں باپ پھر اپنی عزت بچاتے, کبھی کچھ کرتے کراتے, کیا کہتے ہیں, اچھا جاؤ پکڑو, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, جو مانگا لے لو, آپ کل دکھی ہوئی تمہارے پاس نہ آنا روتی ہوئی, پکڑو جو مانگا تمہیں مل گیا, نکل جاؤ. بدوری بَتَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور دے ماری گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وباؤ بغضب من اللہ, تیسرا کام, اور اللہ کے غضب ان پر ٹوٹے. آپ کہہ لیں کہ غضب پر غضب ٹوٹے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غضب بلائے غضب. اب ایک عذاب ان پہ ٹوٹتا نہیں تھا تو دوسرا آ جاتا تھا. تین باتیں بھائی, اللہ اکبر, ضربت علیہم الذلہ, مسکن, اور پہلے ان کو دیکھ لیں کہ ان تینوں کا فرق کیا ہے. ایک کیفیت کیا ہے؟ ذلت کی. ضربت علیہم الذلہ, ذال لام لام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نرم ہونا. آگے پڑھیں گے, اگلے ہی سبق میں آئے گا گائے کے واقعے میں, ٹھیک ہے. ہون کے معنوں میں ہوتا ہے رسوائی, ذلت, خواری, یعنی دنیا میں تمہاری عزت نہیں رہے گی, تم پہ تم ذلیل ہو گئے, لٹ ڈاؤن کر دیا تم کو دنیا میں, تمہارے نام بین کر دیے, تمہیں دوسرے ملکوں میں جانا آنا مشکل کر دیا, تمہارے کانٹریکٹس ختم کر دیے کیونکہ تم فلاں فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہو, تم فلاں قوم ہو. یہ تو ہے کون سی ذلت, مسلمانوں کے نصیب میں آئی اس دور کے. ذلت میں عزت ہی نہ رہنا, تمہاری کوئی ورتھ نہیں, تمہاری کوئی سے نہیں, تم بالکل دنیا کے اندر کوئی عزت, کوئی تمہارے ملکوں میں نہیں آنا چاہتا, کوئی تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہتا, تمہیں کوئی اپنا ویزا نہیں دینا چاہتا, کوئی تمہارے ساتھ کوئی عزت کا تعلق نہیں ہے. یعنی جو ہمیلیشن ہو لیں और मस्कनत का ताल्लुक है गुर्बत से, मनी भी नहीं है। फिर सड़कें तुम्हारी टूटी हुई, मच्छर तुम्हारे, खाना तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यहां मस्कनत से मुराद क्या है? फक्रु नफ्सी व शहुहा, नफ्स की जिल्लत और खुद गर्जी। यानी इसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके लिए, और आपको तो पढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि उनके लिए, आपको लग रहा होगा कि आज हमारे लिए नसीब कर दी। जब कौमें अल्लाह के किसी हुक्म को छोड़ती हैं तो ये हालात है कि अल्लाह दुनिया में उन पे जिल्लत भी है मस्कनत। एक होता है चलो जलील है, कोई बात नहीं, दौलतमंद है, लोग इज्जत नहीं करते, और हाल क्या है कि मस्कनत और जिल्लत इंतहा से, यानी दौलत भी नहीं। अमूमन देखिए जो गरीब होते हैं ना, लोगों को उस पर तरस आता है। यहां वो गरीब है जिसके ऊपर लोगों को तरस भी नहीं आता। ये उन लोगों का हाल कब हुआ और क्यों हुआ, वजह क्या है? क्या अल्लाह ने, क्या बात क्या है? आप सोच रहे होंगे इस वक्त कि अल्लाह ताला इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं इन पे, हाँ? जिल्लत मस्कनत। फिर उसके बाद आप देखिए अगले लफ्ज पे भी हम जाएं तो तीसरी चीज को भी देख ले कि गजब पे गजब टूटे हुक्मरानों के, अल्लाह ने इनके ऊपर दरवाजे खोल दिए। आपको पता है कि बनी इसराइल की ये हिस्ट्री जहां तक हम अभी तक पहुंचे हैं, 40 साल का जो दौर था यूशे बिन नून उनके साथ जो मिले, ये पहुंच गए फलस्तीन के इलाके कनान में, अब वहां आए हैं। अब आप इमेजिन करें कि 40 साल के इस जवाल के दौर के बाद ये मुल्क को फतह करते हैं, वहां भी इनका अरूज होता है। अब लिखने आगे इस दौर में भी हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह वहां आए। हजरत दाऊद और सुलेमान के पास बादशाहत भी थी और नबूवत भी थी। तकरीबन 100 साल का दौर गुजरा, ये कौम दुनिया में अरूज की मालिक हुई, पूरी दुनिया में इनका नाम चल पड़ा क्योंकि इन्होंने उस 40 साल के थपेड़ों से सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ? हजरत सुलेमान की डेथ हुई। बस जब एक लीडर गया तो वो अरूज जवाल में बदला। इसके बाद एक तो इनको नुकसान क्या हुआ कि इनको कोई अच्छा कायद ना मिला, लीडर ना मिला। दूसरी मुसीबत क्या हुई कि आपस में लड़ने लग गए, इतनी खाना जंगियां हुई कि इनका जो मुल्क था ना फलस्तीन, वो दो हिस्सों में बट गया। इनकी रियासत के दो टुकड़े हो गए, एक रियासत का नाम था यहूदा यहूदिया और दूसरे का था सामरिया, इसराइलियों के नाम पे। यानी इसराइल और यहूद की टर्म उस दौर में इजाद हुई, ठीक है? दो रियासतें बनी, एक शिमाली थी एक जनूबी, यानी एक नॉर्दर्न थी और एक साउथ इलाका था। इस 100 साल के अरूज के दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदस को तामीर किया। अब आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हजरत सुलेमान ने हैकल तामीर किया, सारे यहूदी वहां, अच्छा मुसलमान मक्का में जाके करते हैं। तौरात की कुछ तख्तियां जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इनको मिली थी वो वहां मौजूद थी, एक अमन की जगह थी। बड़े पुरअमन तरीके से ये हैकल यानी बैतुल मकदस के अंदर इबादत करते, लेकिन नस्ली और इल्मी किस्म के झगड़े इतने बड़े इनके उलमा में के आपस में लड़ने लग गए। इनके मजहबी उलमा ने लड़ना शुरू कर दिया, फिरके बने। और याद रखिए अल्लाह का एक असूल दुनिया के नक्शे पे लिखा हुआ है, ग्लोब पे, आपको दिखता है कि नहीं दिखता, लेकिन ग्लोब को पढ़ेंगे ना आज जाके तो दिखेगा कि जब कोई कौम आपस में लड़ती है तो दुश्मन के मुकाबले में कमजोर हो जाती है, और जब ये आपस में कमजोर हुए तो दूसरी कौमें इनके ऊपर आ गई। वो याद होगा कि एक बाप ने मरते हुए बच्चों को कहा कि लकड़ियों का गट्ठा लाओ, फिर वो गट्ठा था, कहा इसको तोड़ो, कहा नहीं तोड़ सकते, कहा अब इसको खोलो, अब इसकी लकड़ी लकड़ी तोड़ो, सारी टूट गई। कहा देखो मेरे बेटो, अगर मेरे बात मिल के एक रहोगे ना, तुम्हारे आपस में ना खराबी हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा, और अगर तुम टूटे, बेटे जुदा बेटी, आपस में जायदादों पे बेटे बेटियां लड़ने लग जाते हैं, औरों को तो छोड़ दीजिए, घरेलू सतह पे तो ये होता है, जायदादों पे लड़ने मरने लग जाते हैं। और जब कौमे लीडर्स के जाने के बाद, कभी आप देखिए कितनी बांटे हैं ना, कहीं मजहबी बांट है, कहीं सियासी बांट है, इस वक्त हम कितने मुख्तलिफ ग्रोहों में, हर एक अपने ऊपर लेके सोच सकता है। जब इतनी, अब बनी इसराइल के साथ यही हुआ, जब ये आपस में लड़े टूटे तो बाहर दुश्मन बेवकूफ नहीं होते, वो इनसे भी अकलमंद है। पहला हमला ये जो बाव बे गदब इन अला गदब है ना, मैं आपको इसकी तफसीर बता रही हूं इस वक्त, पहला जबरदस्त हमला इन पर 8वीं सदी कबल मसीह हुआ, यानी हजरत ईसा के आने से 800 साल पहले आशूरियों ने, आपने नाम ये सुने होंगे, एसीरियंस बोलते हैं, इन्होंने इन पर हमला किया, खूब इनकी खबर ली। इनकी शिमाली रियासत जो थी, इसराइल के नाम से, सामरिया के नाम पे थी, इसको बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया, टूट गई। ये इनकी कौम का पहला, ये सारी किस्से आगे जाके भी आप पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल में, अल्लाह दिखाएगा कि तुम पे एक अजाब आया फिर दोबारा। इसके बाद कुछ अरसा फिर उसके तसल्लुत में रहे, फिर गुलामी में आ गए। यहां से देखे ना, फिरौन की गुलामी में थे, निकले, इधर आके वादिया तीह में ठोकरें खाई 40 साल, दूसरा दौर। तीसरा दौर बैतुल मकदस खुल गया, फतह हो गया, 100 साल तक का रूज सुलेमान और दाऊद का। सुलेमान के दौर में खूब अरूज मिला, सारी दुनिया पे इनकी धाक थी, सब लोग इनके पास आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो उसके बाद ये फिर बिखरे, फिर लीडरशिप खत्म हुई, आपस के इख्तलाफात हुए, जब टूटे तो कौम बट गई। इर्द गिर्द जो दुश्मन थे उसमें सबसे पहले अशूरीज, एजीरियंस जो होता है, ASSYRIAN, इस कौम ने इन पे हमला किया, ईंट सेंट बजा दी, इनको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, खूब इनका मामला। 600 कबल मसीह, ये सब पहला कब हुआ? 800 साल पहले। 200 साल तक ये फिर इस हाल में रहे। फिर उसके बाद जब 600 कबल मसीह, यानी ईसा अलैहि सलाम के आने से 600 साल पहले आशूरियों की ये सल्तनत रही, इसी में आप देखिए कि इराक के बशिंदे बेबिलियंस, नाम सुना होगा बाबलीस, या बेबिलियन, उन्होंने इनके ऊपर दोबारा हमला कर दिया। ये है बाव गदब बिम्बी गदब। एक कौम अभी इनको छोड़ती नहीं थी तो दूसरी, दूसरी छोड़ती तो तीसरी, और हुआ क्या कि जूडा की जो रियासत थी दूसरी, पहली तो सामरिया पहले हमले में टूट गई, ये जो जूडा या यहूदिया रियासत थी ये दूसरे में टूट गई। इस दौर पर हैकले सुलेमानी को मुकम्मल तबाह कर दिया गया, सोने की कीमती चीजें उसमें से चुरा ली गई, किताबें जला दी गई, बनी इसराइल को फिर गुलाम बना लिया गया। मजे की बात देखिए, इधर की गुलामी से मूसा ने इनको छुड़ाया, अब ये फिर गुलाम बन गए। कुछ सौ साल के बाद सख्त जलील हुए, इनके उलमा को कत्ल किया गया, इनकी सख्त शामत आई, इस तरह जलीलो ख्वार हुए कि इनके अंदर दीनी सवाल शुरू हो गया। जब कौमें इस तरह होती है ना, तो फिर उनका हाल बिल्कुल इसी तरह बिगड़ जाता है कि वो टूटती हैं। इस दौर में आपको पता है कि जब ये बिखरे तो इस हद तक बिखरे कि हैकल खत्म, खुदा ना खासा इसको इस तरह लेके मुसलमानों का खाना काबा ही खत्म हो जाए, इनकी तौरात तक खत्म हो गई। कैन यू बिलीव कि इस हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया कि जमीन पे तौरात नाम की कोई किताब ही नहीं थी, खत्म। इनके दुश्मनों ने सारी इनकी किताबें जला दी और अल्लाह ने इनकी, नतीजा क्या हुआ, ये बिखर गए। इनको ये तक याद नहीं है कि असल में तौरात किस जुबान में उतरी थी। आपको पता है तौरात के बारे में ये बात, आज भी लोग ये नहीं जानते कि किस में। हाँ ये कहते हैं कि हीब्रो में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, और हमारे पास जो कुरान में, और आप पढ़ रहे इस वक्त, ये ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम अल्लाह सुबहान तआला। किताब भूल गई, इबादत का तरीका भूल गया। आपको पता है इसके बाद आप तीसरे वाक्य बारे में पढ़ेंगे, किसी ने दौरे कुरान में सुना हो तो याद होगा, हजरत उजैर का एक वाक्या, 100 साल तक सोए रहे, ये इस दौर में हुआ, किताब खत्म थी। फिर 100 साल के बाद जब इनके अंदर दोबारा तब्दीली, जब इस कौम का हाल क्या जो बिल्कुल आज हमारा है, जब इनको मार पड़ती है ना दुश्मनों से, तो ये सीधे हो जाते हैं, फिर इनमें जोश भी आता है, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, जरा इनको इज्जत मिलती है इनको रास नहीं आती। यही हुआ, जब इन पे गुलामी हुई फिर इनको समझ आई कि हमने क्या किया, फिर दोबारा शुरू हो गए वो चीजें जमा करने, ताबूते सकीना कि आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जवाल का दौर था, इन्होंने इनको दीनी तौर पे बिल्कुल तबाह कर दिया। ये उस दौर में ना तो आखरत का कोई तसव्वुर था इनके पास, ना कोई किताब थी, ना कोई नबी था, खुद गुलाम बन गए, बिखर गए, ताकत इनकी खत्म हो गई, इनकी इबादत गाहों को ढहाया गया, खत्म, उधर अस्तबल बना दिए गए घोड़ों के जगह। इसके बाद फिर इनके कुछ लोग जो बचे खुचे दीनी रहनुमा थे, उन्होंने बैठ के ये जो सिनेगॉग्स है ना इनके, इसका तसव्वुर उस दौर में पैदा हुआ। इन्होंने एक कानून पास किया कि जिस जगह 10 यहूदियात का एक नुस्खा होगा, वहां एक जगह जमा होकर हम एक सिनेगॉग बनाएंगे और अपने मजहब का रिवाइवल करें। ये बिल्कुल वही कहानी है जो आज हम मुसलमान मुसलमानों के लिए कर रहे हैं कि आज हम जो 7 तरफ पेट रहे हैं, तब कुछ कुरान पढ़े, चलो थोड़े लोग इधर बैठ के पढ़ो, थोड़े उधर पढ़ो, थोड़ी थोड़े बचे खुची चीजों से इन्होंने दोबारा अपने दीन की रिवाइवल की, कहा कि नहीं अब दोबारा चलो। और फिर उनके अंदर से ये सारी जो चीजें खराबियां थी, अकायद के अंदर खराबी, ये वो कर करा के उन्होंने इस तरह किया कि वो जो थोड़े थोड़े लोग थे ना, उनका दीन पे होल्ड हो गया। एक हाथ हद तक तो उन्होंने फायदे का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि इनके मजहबी उलमा जो थोड़े से थे ना, उनमें तकब्बुर और घमंड आ गया। अब वो एक और मोनोपोली शुरू हो गई, हत्ता कि फिर 400 कबल मसीह का दौर आ गया। पहले 800 था, फिर 200 साल बचे, सो अब 400 साल। इसमें क्या हुआ कि सिकंदर आजम, आपने नाम सुना होगा, इसने रूम को फतह किया। रोमन्स आपको तक क्रिश्चियंस थे, इसराइली, इसराइल जो था रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। कुछ बचे खुचे यहूदी थे, इन पर तसल्लुत कायम हो गया। फिर अब रोमन्स के ये गुलाम बन गए, पहले किनके थे, फेरोस के, फिर किनके बन गए, अशूरियों के, और अब आप देखिए रोमन क्रिश्चियंस के हाथों ये गुलाम हो गए। लेकिन कहते हैं कि इनका नस्ली तफाखुर और अपने आप को बड़ा समझना इतना था कि उस दौर में भी कहते थे कि हम बड़े मर्तबे वाले लोग हैं। वो कहते ना कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी उसके बल नहीं गए। ये हालात थे जिसकी वजह से ये रोमन के साथ टकराए। और फिर इनकी वो लड़ाइयां जो आप डीसी में देखिए कि इन्होंने इस किस्म से ये मामला किए कि आज के हालात अगर आप अपने ऊपर लेके देखे कि अब इनकी जो लड़ाइयां ना क्रिश्चियंस के साथ थी, ये जो आज हम और आप समझते हैं ना कि यहूदी और नसरानी आपस में एक है, नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तख्सबहुम जमीयन व कुलूबहुम शत्ता, सूरह हशर में आप पढ़ेंगे। तुम इनको एक समझते हो, इनके दिल टूटे हुए आपस में, ये सिर्फ एक कॉमन कॉज पे जमा होते हैं और वो इस्लाम दुश्मनी है। आपस में इनकी सलीबी जंगे पढ़ लें, आप इनके हालात पढ़ के देखें कि उस वक्त फिर अब इनका आपस में मामला बिगड़ा। इस तरह से लड़ाइयां झगड़े होते होते आज आप देखिए कि जब इनकी ईसाइयों से लड़ाइयां हुई ना, उसमें यहूद दोबारा पिटे, उस वक्त फिर इनके तीन कबीले इधर से निकलकर मदीना के इर्द गिर्द जाके आबाद हो गए, जो आप आजकल पढ़ रहे हैं, कैनका, बनू नजीर और कुरैसा। ये क्यों वहां एक बंजर वीरान तैबा नाम की जगह पे चले गए, क्योंकि इनकी किताबों में इशारे मिल रहे थे कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब आखिरी नबी आएगा और अब हमने उससे मिलकर ईसाइयों से बदला लेना है और मुशरिकीन ने मक्का से हमने निबटना है। नतीजा क्या हुआ कि ये मदीना के इर्द गिर्द जाके आबाद हो गए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लम का दौर आया और वो सारी हिस्ट्री जो आपको पीछे दी थी, बताई गई थी, वो सारी आप पढ़ते जाएं। अब ये सारी कहानी आगे भी सुनाऊंगी, कुछ चीजें आगे चलती जाएंगी, लेकिन यहां आपको बाव भी गदब बिन अला गदब की बात समझ आई कि कौमों का अल्लाह करना ये है अल्लाह का गजब। और चौथी बात, तीन बातों के बाद कहा ये हुआ क्यों, जालिक बी अन्नहुम कानू यकफुरू नबी आयतिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, पहला जुर्म इनका। दूसरा, वह यक्तुलूनन नबी न बगैर अल्हक, ये अपने नबियों को नाहक तौर पे कत्ल कर देते थे। और तीसरा, जालिक बीमा असब, तीसरा इनका जुर्म नाफरमानियां करते थे। और चौथा, व कानू यातदून, और ये हदों से भिड़ने वाले लोग थे। आप भी सोचते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए पीछे जब आपने ये ककड़ी और साग की बातें पढ़ी ना, तो अक्सर लोग इससे मिसअंडरस्टूड होते हैं, कहते हैं क्या हुआ, इन्होंने सब्जी दवाली तो मांगी थी लेकिन अल्लाह का इतना गजब क्यों है। तो यहां आप देखिए कि असल में अल्लाह ताला ने इनके जरायम की लिस्ट लंबी खोल के बता दी कि ये चार बड़े काम। नबी इनके पास जब आते, ख्वाहिश परस्त इतने हो गए थे कि नबियों की लाई हुई बातें, तालीमात इनकी ख्वाहिशों के रास्ते में रुकावट बनती थी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज लोगों ने लफ्ज मौलवी बना लिया ना गाली, इन्होंने नबी लफ्ज को गाली बना लिया। ये कहते थे ये मौलवी, हम कहते हैं ना ये मौलवी जीने नहीं देते, तो ये बोलते थे ये नबी जीने नहीं देते। अब होता क्या कि जब कोई नबी इनके पास कोई बात लाता, हम पहले ही पारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई नबी इनके पास आया कि जो इनकी ख्वाहिशों के बीच में रुकावट बनता, ये उसको कत्ल करना इस कौम के लिए ऐसे है कि जैसे आज किसी का जाके आप सोच लें कि वीडियो गेम्स खेलना, बच्चा बच्चा इनका इस काम में माहिर है। इस तरह से नबियों को कत्ल करते थे, खुद ब खुद ही अपने ऊपर कहते हैं कि हमने इन्ना कत्ल ना मसीह, आगे हम पढ़ें से आएंगे आप पढ़ेंगे, खुद दावा करते हैं कि हमने मसीह को कत्ल कर दिया। 70,000 नबियों, 70,000 नहीं, मेरे ख्याल 313 नबियों को एक दिन में इन्होंने कत्ल किया। आगे जाके कहीं जरूरत पड़ी तो आपको सुनाऊंगी। इस तरह गाजर मूली की तरह नबियों को काट के आते थे। इनके बारे में खुद आता है किताबों में इनकी कि सुबह में इतने नबियों को कत्ल करते थे और रात को जाके सब्जी बेचना शुरू कर देते थे। इट्स नॉट अ बिग डील। आखिर क्यों? क्योंकि इन्होंने मकसद भूल दिया। आज के मुसलमानों के लिए, मेरे और आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी चीज दी, लेकिन हमें भी अल्लाह ने बड़ी दी। हमें भी कोई दिया अल्लाह ने ऑनर के नहीं? اللہ نے ہمیں دیا. وجعلناکم امتاً وسطا, کل ان کو کہا تھا شہادت حق کی گواہیاں دو دنیا میں اللہ کا نام بلند کرو, آج ہمیں دیا, لیکن جو اس کو چھوڑ کر ٹیسٹ میں پڑ گئے. یہ مقصد کو بھولنے کی سزا تھی, لکھ لے. یہ ذالکہ کے بیمار سب ہے نا, اس کے نیچے لکھ لے بڑا بڑا, مقصد کو بھولنے کی سزا تھی, خواہشات کے بڑھنے کی سزا تھی. اور دیکھیے مانگا بھی تو کیا مانگا, دنیا کا بھی حقیر ہی مانگا. آپ امیجینیشن میں لائیں ذرا, کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں بلایا جائے اور بادشاہ کے مانگو کیا مانگتے ہو, تو کیا مانگنا چاہیے؟ وہ مانگے نا, اللہ نے ان کو عزت دی تھی, آؤ مجھ سے مانگو, دنیا کا غلبہ مانگو. مانگنی تھی تو عزت مانگتے, مانگنی تھی تو دین کی توفیق مانگتے, مانگنی تھی تو ہدایت مانگتے, مانگتے تو لوگوں سے اللہ کے راستے, اللہ سے کے راستے میں کام کرنے کی بات مانگتے. وہ شریعت کے سوالات پوچھتے جو اب نازل ہو رہی تھی اس وقت, لیکن انہوں نے مانگا کیا کہ ہمیں ککڑی پیاز اور چاہیے, مقصد کو بھولے. آپ امیجینیشن میں لائے, میں کہتی ہوں کہ صدر کو تو چھوڑ ہی دے, امریکہ کا صدر تو چھوڑ دے, صرف امریکہ کا امبیسیڈر آپ کو ملے اور کہے کہ آپ جو مانگے لو دے دو, کیسا لگتا؟ یہ جنہوں نے مانگا ہے نا کہ ممت یعنی من بقلی ہا کے سائی ہا وفومی ہا وادس یہ بسلی, کسی ہوٹل میں جا کے مانگے تو بہت اچھا مطالبہ, نو پرابلم مانگے, لیکن مانگ کس دربار سے رہے ہیں جہاں سے ان کو اللہ کے کام کرنے کی توفیق مانگی تھی؟ اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا تھا, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں کو دیا. اور یاد رکھیے زوال شدہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے نہیں بنتے نا تو دنیا والے بھی نہیں بنتے. آج اپنے اور میرے حالات پہ رکھ کے دیکھ لیجیے امت مسلمہ, ہم کہتے ہیں یہ پیچھے کیوں ہیں اور ویسٹرن کنٹریز آگے کیوں ہیں. آپ ایک پیج پہ بیچ میں لائن لگائیں, ایک طرف لکھیے ویسٹرن کنٹریز یعنی ڈیولپڈ کنٹریز, اور دوسری طرف لکھ لیجیے ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز جن کو ہم ترقی پذیر ملک کہتے ہیں. آپ ذرا تقابل تو کریں, ترقی یافتہ لوگ کھانا کھانے پہ کتنا وقت لگاتے ہیں اور ہم کتنا لگاتے ہیں, وہ کھانا پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں اور ہم کھانا پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں. آپ کو پتا کہ امریکنز میں ہاٹ ڈنر صرف ویکینڈز پہ ملتا ہے, ان کے گھروں میں یہ تصور ہی نہیں کہ روز چولہا جلے. وہ بریڈ پہ سلائس لگا لیا, جیب لگا لیا, چیز لگا لیا, آپ کے بھی ادھر ہی کچھ ہوگا. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ مسلم تین وقت کھانا گرم کھاتے ہیں. ان کے لیے آپ نے اکثر سنا ہو جائے کہ ان کے گھروں میں کھانا گرم نہیں پکتا, اور ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ شوہر کہتے ہیں اب گرم روٹی دوپہر میں نہیں ملتی, پہلی کی پڑی ہوئی ہے. ہم اس پہ طلاق دینے کو تیار ہیں کہ بیگم اب روز تین ٹائم پہ فریش کھانا نہیں پکا کے کھلا رہی ہیں چونکہ کورس چو کر رہی ہیں. حالات دیکھیے ہمارے, آج ہم اپنا حال دیکھیں, وہ شادیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہم شادیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑ دے, صرف دنیا والے لوگوں کو جو کامیاب ہے ان کو ہی دیکھ لیجیے, ان کا کوئی مر جائے تو اس پہ کتنا وقت ہے اور ہماری موتوں پہ کتنا ہے. وہ زیور پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہم سونے چاندی پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, وہ گھروں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہم کتنا کرتے ہیں, پھر بتائیے کہ کیا ہمارا حال ہمیں خود نہیں دکھ رہا؟ اور کتنے فخر سے پھر ہم ان کے طریقے مناتے ہیں, انہی کی ویلنٹائن, انہی کے کرسمس, انہی کی باتیں, انہی کی کہانیاں مناتے ہیں, ان کی بسنتیں مناتے ہیں, اور ہم تو اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم بھی کچھ اسی راستے میں, ہم خوش ہیں چائنیز پکا کے, ہم اٹیلین پکا رہے ہیں, ہم خوش ہیں, بہت خوش ہیں. آج دیکھیے کہ کون کہتا ہے پاکستان کے حالات خراب ہے اور کون کہتا ہے امت مسلمہ پس رہی, صرف نیوز چینلز والے کہتے ہیں جو آپ کو خبریں سناتے ہیں آ کے, یا بیچارے اخباروں والے جرنلسٹ جو ہیں نا وہ سناتے ہیں, وہ سناتے ہیں عام لوگوں میں. جا کے تو دیکھیے, آپ جائیے ذرا, چھٹیاں ہو رہی ہیں, 10-8 دن کا ٹرپ بنا لیں, جا سکتے ہیں, دیکھ کے آئیے ذرا آپ کو کس گھر میں جا کے لگتا ہے کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے. اور ہم روتے ہیں, خبر سنتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو لاؤ مووی نکالو, انہی کی موویاں ہم دیکھتے, انہی کی, اور دین کا کام کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, آخری باتیں, پار سبق پورا ہو گیا ہمارا. آپ سوچئے کہ کوئی بندہ 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, 1 لاکھ روپے کسی کی پہ ہے, کیا وہ 1 لاکھ روپے کی گروسری خرید لیتا ہے؟ نہیں خریدتا نا. کیا کرتے ہم, چلو 1 لاکھ والا 10,000 روپے کی گروسری خرید لیتا ہوگا, باقی 90,000 جو ہے وہ کس پہ لگاتے ہیں؟ اپنے لائف سٹائل کو اونچا کرنے کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, लाइवलीहुड है, लग्जरियस लाइफ है, दिस एंड दैट है. आप सोचिए कि दुनिया के लिए कमाने वाला एक बंदा जब पूरा पैसा सिर्फ खाने पे नहीं लगाता, तो आप इसको ले लीजिए आखिरत पे. ये जो वक्त हमें अल्लाह ने जिंदगी में दिया और जो माल दिया, इसको आप आखिरत की भी तो एक जिंदगी है ना, क्या हम उस सारे को सिर्फ खा पी के लगा देंगे? सिर्फ खाना पीना. मैं आप सबको एक काम दे देती हूँ, आप वीकेंड पे कर लें या अभी कर लें, आप सिर्फ एक महीना बजट ग्रोसरी करें. बजट ग्रोसरी वो क्या होती है? आप एक तो ये फिरना ठुरना छोड़ दें कि इधर से लेनी है, उधर से लेनी है. जहां से भी ग्रोसरी लेते हैं ना आप, अगर एक हफ्ते का, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप लोगों के कितने खर्चे होंगे घरों के, लेकिन सिर्फ आप अपने खाने की चीजों में जो महंगी आइटम्स है ना उनको कट डाउन करें. मिस लेके आते हैं ना, सॉस है घर बना ले. पहली माए भी तो चार चटनी घर ही बनाती थी. आप सोचिए कि हमारे घरों में बाजार का मीट आता है ना, जो फ्रोजन चीजें होती हैं, नगेट्स कह ले, फ्रोजन जो भी चीजें हैं, आप कह नहीं मैं फ्रेश मीट ला के बनाती हूँ. आप एक महीने हफ्ते में हो सकता है एक दफा वंस अ वीक आप जाते होंगे बाहर खाना खाने, आप कहें कि सफा ये नहीं करना, फिर एंड ऑफ मंथ बताइएगा कि आपके कितने पैसे बचे. हमें बजट नहीं बनाने आते, आजमा के देखे. बार दफा आप कहते हैं ना हाय ये मीट कच्चा इतने का आया है, लेकिन आप सोचे उस कच्चे मीट से चार मील बन जाने हैं और आप बाजार से एक बर्गर लेते हैं 5 पाउंड का आ जाता है. तो असल बात इस वक्त हम सबके लिए है, ये मेरे और आपके लिए, कि अल्लाह हम सबको एक बहुत बड़ा मकसद दे रहा है उम्मत बनने का. बनी इसराइल बाहर एक कौम लग रही है, लेकिन एक रवैया है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं. आज भी मुसलमानों के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वल्लाही आज भी मुसलमानों पर मामले हैं, लेकिन इंसान जो है वो क्या करता है, खुद अपने आंखों से देख रहे हैं लोगों को कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ फिक्र नहीं होती. क्या तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ बिल्लज़ी खैर, ये बात नहीं है. अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह कर दे. आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में?
ये जब कंपैरिजन हो रहा था डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, तो उसमें जब
ऑनलाइन पे भी
सबसे
लिखिए.
जो मुझे मेन चीज लगती है कि ये लोग बेशक हम लोग इनको बेदीन और हमें लगता है ये प्रैक्टिसिंग पर्सन्स नहीं है, लेकिन आप ये देख मिशनरीज पर्पस के लिए ये कितना पैसा दे रहे हैं, ये लोग कितना प्रोपोगेट कर रहे हैं, और हमारा इस्लाम में जहां पे कोई काफला निकला और वहीं पे पीछे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया या उनको बंद मारने का शुरू हो गया, ये मुझे लगता है कि
जी बिल्कुल, इन्होंने सच कहा. आप देखिए मिशनरीज का इन्होंने लफ्ज़ बोला है, आगे जाके आपको कुछ कोर्स भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, कि ये लोग अपने मिशनरी वर्क पे कितना पैसा लगाते हैं. मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे वीकेंड पे कहीं गए, पता नहीं कहाँ थे क्या हुआ, तो एकदम कहते हैं कि मेरे खड़े थे तो पता नहीं कौन आया, क्रिश्चियन था कोई, मेल थी या फीमेल मैंने ये भी नहीं सुना, तो कहते हैं कि वो मेरे पास आके तो कहता है कि यू नो जीसस लव्स यू, यानी उसने एकदम कहा कि जीसस तुमसे बहुत प्यार करता है. तो मैंने कहा आपने आगे क्या कहा? कहते मुझे क्या कहना चाहिए था. मैंने कहा आपको कहना चाहिए था यस आई लव जीसस टू, हम भी जीसस से बहुत प्यार करते हैं. और फिर वो कहने, हालांकि उसको ना हाल हुलिये से और इन सारी चीजों से दिख ही रहा था कि ये मुस्लिम है. इन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं मुस्लिम हूँ? तो उसने कहा ऑफकोर्स तुम मुस्लिम ही लग रहे हो, लेकिन वो रात चलतों को देते हैं, इतना मटेरियल बढ़ता है. आप हैरान होंगे कि मिलियन डॉलर सिर्फ ये अपने दावा प्रोडक्ट पे लगाते हैं, और हम सदका जारिया के नाम पे जो सरासर हमारा अपना है, हम उस पर भी 10 दफा सोचते हैं. आज उम्मत मुस्लिमा का जवाल इस वजह से है कि हम अपनी जात पे पैसा लगाते हैं, दीन पे नहीं लगाते. हमारा दीन मुख्ताज है, मिस्कीन, और यकीन करें सौतेला बच्चा, घर में एक सौतेला बच्चा पल रहा होता है सबको पता होता है, सामने दूसरों के बहुत प्यार प्यार करते हैं हम उसको, केले में घूरते हैं. आज हमारा दीन के साथ ये हाल है, रोना पड़ता है हमें दीन का कुछ, तौबा अल्लाह अकबर. दीन दीन तो ऐसे लगता है खुशी ही ले जाता है जिंदगी से, और हम इतने परेशान होने लगते हैं. जी इधर ऑनलाइन से एक आध, आप लोगों की ब्रेक है वैसे अभी, और 20 मिनट काउंट कर लें इंशाल्लाह ताला. ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, नमाज एंड पे होगी, और उसके अलावा फुल सबमिशन एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, हजरत मूसा इज एज जस्ट डिड आई डू, नो मन जी. ठीक है, आप सब लिखिए अपने कमेंट्स प्लीज. अब मैं रोज कहा करूं तो लिखेंगे ना, और नहीं कहूंगी तो नहीं लिखेंगे. इंशाल्लाह कुछ चीजें कल भी आएंगी आप सबके कमेंट्स की रोशनी में. बल्कि सुनते वक्त जब आप कोई बात सुन रहे होते हैं ना, उसी वक्त लिख लिया करें. कोई एक ऐसी आयत होती है जिसपे दिल चाहता है कुछ बोलने को, तो बीच में अगर ना भी मौका मिल सके तो आप लिख के रख लिया करें. ठीक है, انشاءاللہ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن پہ بھی کوئی کوسچن اگر ہے, کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو پلیز لکھیں, اور آپ کے سارے کمنٹ سیو کر کے مجھے بھیج دیجیے گا.